शुभाशुभ फलैरेण मोक्ष से कर्म बंधन संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि। विमुक्तो हम लोग चर्चा कर रहे थे संन्यास योग, कैसे संन्यास योग मतलब सब कुछ भगवान को समर्पित करना चाहिए, सन्यासी को कैसे होना चाहिए, उसके कारण वो शुभ और अशुभ पालन से मुक्त हो जाते हैं, ऐसे कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। विमुक्तो माम उपैष्यसि, माम उपैष्यसि मेरे पास आ जाते हैं, ऐसे कहते हैं। तो पांच प्रकार के मुक्ति होते हैं, किसी को पता है पांच प्रकार के कौन से? सायुज्य, वो क्या बोलते हैं उसको, सालोक्य या सामीप्य, भगवान के पास मतलब सामीप्य, उनका लोक को प्राप्त करना मतलब सालोक्य, दो अलग चार हो गए। और सृष्टि, सृष्टि सो पता है ना सभी, ये सायुज्य सारूप्य, सायुज्य क्या है, सायुज्य क्या है, सायुज्य सारूप्य, सब लोग लिख लीजिए जल्दी 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 जल्दी, सायुज्य भगवान में तदाकार होना, भगवान में लीन होना, इसको सायुज्य कहते हैं। पांच प्रकार के मुक्ति ऐसे लिखिए, पहला सायुज्य भगवान में तदाकार होना, दूसरा सारूप्य भगवान के समान स्वरूप को प्राप्त करना, जो वैकुंठ में होते हैं सबको उनके जैसे ही स्वरूप होता है, ही हैज स्पेंड आर नॉट, आप लिख सकते हैं ना, कैनॉट राइट, सम नोटबुक ऑल्सो वी कैन बी, कृष्ण कॉन्सियसनेस इज एजुकेशनल, वी शुड हैव, श्रवण से आता है सब कुछ, लेकिन आजकल क्या स्मृति उतना ठीक नहीं रहता है। तो सारूप्य मतलब भगवान के जैसे समान स्वरूप को प्राप्त करना, और तीसरा है सालोक्य भगवान को धाम, भगवान के धाम को प्राप्त करना, सालोक्य
सालोक्य
सालोक्य, और श्राष्ट क्या है, सामीप्य सामीप्य मतलब भगवान के निकट वास प्राप्त करना, और सृष्टि 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 मतलब भगवान के जैसे ऐश्वर्य को प्राप्त करना। तो वैष्णव आचार्य पहला वाला है उसको नहीं मानते हैं, सायुज्य में मतलब भगवान के जो वो ब्रह्म ज्योति में एक होना या उनके शरीर में प्रवेश एक हो जाना, वहाँ पर सेवा का अवसर नहीं मिलता, इसलिए वो नरक के समान है बोलते हैं वैष्णव आचार्य। अन्य चारों को, वास्तव में जो शुद्ध भक्त होते हैं अन्य चारों को भी वो इच्छा नहीं करते, लेकिन सेवा के सेवा है तो वो स्वीकार कर सकते हैं उसके संबंध में। ठीक है, तृतीय स्कंद में कपिल मुनि ऐसे कहते हैं, मेरे भक्त जो है ये चार प्रकार के जो मुक्ति है वो भी स्वीकार नहीं करते, कि बिना मत सेवनम, मेरे सेवा के बिना, सेवा है तो वो स्वीकार करेंगे, नहीं तो स्वीकार नहीं, उनको सेवा से मतलब है, मुक्ति मुक्ति उनसे कुछ मतलब नहीं। बिना मत सेवनम ऐसे कहते हैं। तो ये चार प्रकार के मुक्ति हैं। और यहाँ पर माम उपेस्यसी शब्द का अर्थ होता है कि कौन सा मुक्ति इसमें से चार बताइए, माम उपेस्यसी मतलब चार में से कौन सा मुक्ति? सामर्थ्य। क्यों?
मेरे पास
सो एंड कम टू मी ऐसे बोलते हैं, मेरे पास आ जाओगे ऐसे बोलते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं ना माम उपेस्यसी, क्या बोल रहे हैं माम उपेस्यसी? कहाँ पर है वो? वो मेरे पास आता है अर्थात मेरे धाम वापस आता है। मुक्ति के पांच विभिन्न अवस्थाएं हैं और यह स्पष्ट किया गया है कि जो भक्त जीवन भर परमेश्वर के निर्देशन में रहता है वह ऐसे अवस्था को प्राप्त हुआ रहता है जहाँ से वह शरीर त्यागने के बाद भगवत धाम जा सकता है और भगवान के प्रत्यक्ष संगति में रह सकता है। प्रत्यक्ष संगति में रहना मतलब वो क्या है, सामीप्य मुक्ति को प्राप्त करता है। ऐसे संन्यास योग को पालन करते हैं वो लोग सामीप्य मुक्ति को प्राप्त करते हैं। समझ में आ रहा है? सो अगला श्लोक, समोहम सर्वभूते, कुछ पूछना था आपको? कुछ नहीं ना, समझ में आ गया सब कुछ? हम कहाँ से कहाँ पढ़े समझ में आ गए ना, 28वां श्लोक की तात्पर्य से। समोहम सर्वभूतेषु न मे भक्ति न मे द्वेषोस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो समोहम सर्वभूतेषु नमे भक् नमे द्वेषोस्ति न प्रियः। तो भगवान का एक ऐसे गुण होता है कि वो कभी किसी को पक्षपात नहीं करते। तो श्रीमद् भागवतम में एक प्रश्न था परीक्षित महाराज का, ऐसा लगता है कि भगवान छठे स्कंद में बहुत ऐसे वर्णन हुआ कि भगवान कैसे देवताओं का सहायता करते हैं, हाँ जब देवता और असुरों के बीच में युद्ध होता है तो देवताओं का सहायता करते हैं। फिर सातवें स्कंद के आरंभ में परीक्षित महाराज ने एक प्रश्न पूछा, ऐसा लगता है कि भगवान पक्षपात करते हैं। फिर उसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान पक्षपात नहीं करते हैं, जब भी वो असुरों को मारते हैं उनको भी वो मुक्ति प्रदान करते हैं, वो ये भगवान की विशेषता है। या जो लोग जो असुर भगवान द्वारा मारे जाते हैं उनको मुक्ति प्राप्त हो जाता है। हम लोगों ने पहले चर्चा कर चुके हैं ना कि पहले अध्याय में भगवान दोनों सेनाओं के बीच में आ गए, आके क्या कर दिया उन्होंने, हम लोग भीष्मदेव के श्लोक को उल्लेख कर रहे थे कि जो दूसरे पक्ष के लोगों के जीवन को हरण कर दिया अपनी दृष्टिपात करके। तो कभी कभी लोग निंदा करते हैं भगवान को कि भगवान ने युद्ध में युद्ध झगड़ा भाई भाइयों के बीच में झगड़ा कराया, हाँ, और ये युद्ध में, युद्ध को करने के लिए भगवद गीता में उपदेश दिया उन्होंने। हाँ, इसके कारण कितने सारे हिंसा हो गया, ऐसे लोग बोलते हैं। लेकिन जो भी वहाँ पर स्वयं भीष्म देव कहते हैं, जो भी भगवान के उपस्थिति में जन वो शरीर त्याग दिए, वो सब भगवान के धाम चले गए, सबको मुक्ति मिल गया, है ना। बहुत बड़ा ऑफर है ना ये, कि भगवान के धाम चले गए। बोलो, बाहरी तौर पर ऐसे हुआ कि बहुत सारा हिंसा हुआ, वह ये सब हुआ, लेकिन सबको भलाई हुआ वहाँ उस युद्ध में। तो ये भगवान का एक गुण होता है कि वो एक और गुण होता है, वो पक्षपात नहीं करते हैं, वो एक गुण है। और दूसरा है क्या, जिन असुरों को वो मारते हैं उनको मुक्ति प्रदान करते हैं। तो इतना कृपालु है वो। उसके बाद वो कहते हैं, अहो बकीयम सनकाल कूटम जिगांशयाये, तो वो बकी पूतना को भी उन्होंने क्या स्थान दिया उन्होंने, तो एक नर्स धात्री का स्थान दिया उन्होंने। तो ऐसे दयालु कोई हो सकते हैं क्या, ऐसे उद्धव विदुर को कहते हैं तीसरे स्कंद में। तो ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। तो भगवान ऐसे सबको क्या प्रदान करते हैं, पूतना तो स्तनकालकूटम, कालकूट नामक एक विष को अपने स्तन के ऊपर लगा के आए थे कृष्ण को मारने के लिए। उनको भी भगवान क्या दिया, उनके धाम में धात्री का स्थान दिया उन्होंने। तो इतने दयालु व्यक्ति कोई हो सकते हैं क्या, ऐसे क्या। तो इसलिए भगवान क्या है, सबके पिता है, सभी जीव उनके बच्चे हैं। जैसे माता पिता किसी बच्चे को पक्षपात नहीं करते, वैसे ही भगवान भी पक्षपात नहीं करते, सबको समान। और प्रभुपाद यहाँ पर एक उदाहरण दे रहे हैं, एक ऐसे बारिश पत्थर के ऊपर भी और रेगिस्तान में या ऐसे ऐसे जगह पर भी वो बारिश होता है। तो इसलिए वह भगवान भी वैसे ही कृपालु है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। फिर उसके उत्तर में वहां पर सुखदेव गोस्वामी भी वो वर्णन करते हैं, वो कैसे शिशुपाल का हत्या हो गया, शिशुपाल को भी भगवान क्या दे दिया, मुक्ति दे दिया उन्होंने, हालांकि सायुज मुक्ति। और उसके बाद वो वहां से भगवान के धाम चले गए। तो ऐसे हम लोग देखते हैं कि भगवान दयालु है, सबको समभाव से वो देखते हैं। फिर भी आगे बोलते हैं यहाँ पर, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। लेकिन जो मेरे भक्त है उनके लिए मैं विशेष कृपा करता हूँ, वो मेरे मित्र है और मैं उनका मित्र हूँ, ऐसे कहते हैं। मयि तेषु चाप्यहम्, वो मेरे है बोलते हैं भगवान। तो प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं कि हालांकि एक जो बहुत ही दानवान, क्या बोलते हैं उसको, चैरिटेबल पर्सन, दानवान, तो व्यक्ति सबको दान देता है, लेकिन वो अपने पुत्रों को, बच्चों को विशेष ध्यान देता है कि नहीं, उनके प्रति ज्यादा स्नेह होता है। वैसे ही भगवान सबको समान भावना से देखते हैं, लेकिन अपने भक्तों को और विशेष कृपा करते हैं वो। सो विशेष कृपा वो अपने भक्तों को करते हैं, इसलिए वो कहते हैं यहाँ पर महिते, प्रभुपाद जी वो वर्णन कर रहे हैं ना, इसलिए वो कहते हैं महिते। महिते मतलब क्यों, वो कृष्ण भक्त लोग कृष्ण भावनामृत में होने के कारण वो हमेशा कृष्ण में ही रहते हैं, यही आता है। मई थे मतलब कृष्ण में रहना, वो मुझ मेरे अंदर है, मैं उनके अंदर हूँ, ऐसे। तो मई थे दे आर इन मी सो ऐसे ये यतानां प्रपद्यन्ते तां स्तैव भजामि अहं मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। तो ऐसे शिल प्रपद वर्णन कर रहे कि भगवान क्योंकि भक्तों को वो जैसे हम लोग उनको शरण में जाते हैं वैसे वो कृपा करते हैं, विशेष करके भक्तों को बहुत कृपा करते हैं वो। और यहाँ पर एक उदाहरण दे रहे हैं, जब एक डायमंड वज्र को ऐसा सोने के जो अंगूठा होता है उसमें डाल दिया होता तो क्या हो जाता है, सोने का अंगूठा भी वज्र के जैसे ही चमकता है। प्रभुपाद जी लॉर्ड एंड द लिविंग एंटिटी एटर्नली ग्लिटर एंड व्हेन अ लिविंग एंटिटी बिकम्स इंक्लाइन टू द सर्विस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड ही लुक्स लाइक गोल्ड। तो एटर्नली ग्लिटर भगवान और भक्त क्या हो जाते हैं, शाश्वत रूप से वो चमचमाते हैं, चमकते हैं ऐसे बोलते हैं। भगवान तथा जीव निरंतर चमकते रहते हैं और जब कोई जीव भगवान की सेवा में प्रवृत्त होता है तो वह सोने की भांति दिखता है ऐसे, है ना। तो भक्त लोग और भक्त लोग क्या हो जाते हैं और चमकने लगते हैं भगवान के साथ सेवा में लगने के कारण, है ना। जैसे आप लोग चमकते हैं लोग आपको देख के आकर्षित हो जाते हैं, तो ऐसे तो दोनों का महिमा बढ़ती है, भगवान तथा जीव निरंतर चमकते रहते हैं और जब कोई जीव भगवान की सेवा में प्रवृत्त होता है तो वह सोने की भांति दिखता है, भगवान हीरे के समान है, अतः यह संयोग अत्युत्तम होता है। शुद्ध शुद्ध अवस्था में जीव भक्त कहलाते हैं, परमेश्वर अपने भक्तों को भी भक्त भक्त बन जाते हैं। यदि भगवान तथा भक्त में आदान प्रदान का भाव न रहा तो सगुणवादी दर्शन ही नहीं रहे। मायावादी दर्शन में परमेश्वर तथा जीव के बंध में ऐसे आदान प्रदान का भाव नहीं मिलता, किंतु सगुणवादी दर्शन में ऐसे होता। सो ये भजन्ति तु माम भक्त्या, भक्त्या का भक्त शब्द का परिभाषा दे रहे श्री प्रभुपाद कि शुद्ध अवस्था में जीव भक्त कहलाता, तो उसको कह रहे ऐसे हम लोग यहाँ पर डिजायर्ड रही वो कल्पवृक्ष का उदाहरण दिया मैंने भी। यह दृष्टांत दिया जाता है कि भगवान कल्पवृक्ष के समान है और मनुष्य इस वृक्ष से जो भी मांगता है वो भगवान की पूर्ति भगवान उसकी पूर्ति करते हैं, किंतु यहाँ पर जो व्याख्या दी गई है वह अधिक पूर्ण है। यहाँ पर भगवान को भक्त का पक्ष लेने वाला कहा गया है, यह भक्त के प्रति भगवान के विशेष कृपा की अभिव्यक्ति है। भगवान के आदान प्रदान भाव को कर्म के नियम के अंतर्गत नहीं माना चाहिए, या तो उस दिव्य अवस्था में संबंधित रहता है जिसमें भगवान तथा उनके भक्त कर्म करते हैं। भगवत भक्ति इस जगत का कार्य नहीं है, यह तो उस अध्यात्म जगत के अंश है जहाँ शाश्वत आनंद तथा ज्ञान प्राधान्य हो रहता है। तो जैसे हम कह रहे थे तो बेसिकली यहाँ पर इन सभी श्लोकों में भक्त वत्सलता बहुत दर्शाया गया। तो अगला श्लोक और इसके बारे में, अपिचेत्सु दुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में क्या है अडिग रहता है। अपि से दुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो सः। तो इस श्लोक में भगवान साधु शब्द का परिभाषा दे रहे हैं। क्या परिभाषा है साधु शब्द का, क्या परिभाषा है साधु शब्द का? क्या हंस रहे आप तुम्हें बताओ, कुछ होना चाहिए। हाँ, सो जो बजते माम अनन्य भाव वो साधु है। अनन्य भाव से जो भगवान का भजन करते हैं उनको साधु कहते हैं। साधु शब्द का यही परिभाषा श्रील प्रभुपाद इसको वहां पर उल्लेख करते हैं। श्लोक तो उल्लेख नहीं किया उन्होंने, वो लिखते हैं ऐसे। कहाँ पर पता है? परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाकाय संभवामी युगे युगे। परित्राणाय साधु नाम, साधु नाम मतलब साधु का वहां पर एक यही परिभाषा देते हैं श्रील प्रभुपाद। तो ये साधु शब्द का परिभाषा है। कोई और बताएंगे अन्य क्या परिभाषा है साधु शब्द का? कोई और परिभाषा? बोले दूसरे व्यक्तियों के लोगों के आसक्तियों को काटता है, वो भगवान स्वयं कृष्ण ने बताया वो 11वें स्कंद में। ततो दुस्संगमुत्सृज्य सत्सुसज्जेत बुद्धिमान संत एवास्य चिंतन्ति मनोव्यासंगमुक्तिभिः। ततो दुस्संगमुत्सृज्य, जो दुस्संग असत्संग को त्याग देते हैं और संतों का संग करते हैं उनको बुद्धिमान कहा गया, बुद्धिमान व्यक्ति। संत एवास्य चिंतन्ति मनोव्यासंग मुक्ति भी। तो संत को क्या क्या करते हैं वो हमें काट देते हैं मुक्ति भी। मुक्ति मतलब कठोर शब्दों से हमारे भौतिक आसक्तियों को काट देते हैं। चिंतन्ति काटना 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 उनका कार्य होता है, वो एक परिभाषा है। और एक कई और परिभाषा, कोई और परिभाषा साधु का? साधु के लक्षण बताए गए उसमें। तितिक्षव कारुणिक सूरद सर्व देहिनाम अजात शत्रव शांतो साधु व साधु भूषणम। साधु व साधु भूषणम साधु के भूषण लक्षण बताए, वो तीसरे स्कंद में कपिल देव के थे। ऐसे 9वें स्कंद में है साधवो हृदय मह्यम साधुना हृदय त्वहम मदन्य ते न जानाति नाहम तेभ्यो मना कपि। साधु मेरे हृदय में है, मैं साधु के हृदय में हूँ, मुझे छोड़कर वो कुछ नहीं जानते हैं, मैं भी उनको छोड़कर कुछ और नहीं जानता, बस और कुछ पता नहीं है लोगों को, ऐसे भगवान बोलते। तो ये वहां पर जब दुर्वासा मुनि किनको अम्बरीश महाराज को अपराध किया था, फिर सुदर्शन चक्र उनके पीछे लग गया, सभी जगह भागा भागा भागा, भगवान के पास भी आए, भगवान ने तो बोला ये मेरे हल से बाहर है, ये मेरे से नहीं होगा आपकी रक्षा करना, क्योंकि ये लोग मुझे बहुत ही प्रिय है, साधु जो है बहुत प्रिय है ऐसे होते। तो ऐसे साधु का परिभाषा भी हम भगवान के संबंध में देना चाहिए, तो वो वास्तविक परिभाषा। तो अनन्य चेता सततम यो माम अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव संबंधव्य। तो इनको साधु समझना चाहिए जो अनन्य भाव से भगवान का भक्ति कर रहे। और यहाँ पर सुदुराचार शब्द प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी वर्णन कर रहे हैं कि वो महत्वपूर्ण है और उसको सही तरीके से हमें समझना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद विस्तार से वर्णन करते हैं इसको कि जब हम लोग भक्ति में प्रवेश करते हैं तो हमारा दो कर्तव्य होते हैं, एक भौतिक कर्तव्य कंडीशनल धर्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल धर्म। पहले भी कंडीशनल ड्यूटी और कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, ये दूसरे अध्याय में भी वर्णन हुआ। तो ऐसे भौतिक संसार में भी हमारे कार्य होते हैं और हमारे भक्ति के कार्य भी होते हैं, तो दोनों साथ साथ चलते हैं, ये पैरेलल। तो भक्तों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो भक्ति के लिए बाधक हो कार्य, लेकिन क्योंकि बद्ध अवस्था के कारण ऐसे हो जाता है कि कभी कभी टेम्पररी एक अस्थाई पतन हो जाता है भक्त को। जब ऐसे भक्त हो जाता है तो क्या करना चाहिए? अपिच्छे दुराचारो, दुराचार मतलब सुदुराचार, यहाँ पर वास्तव में सुदुराचार मतलब मोस्ट अबॉमिनेबल एक्शंस। क्या हो सकते हैं मोस्ट अबॉमिनेबल एक्शंस? विशेष करके चार नियम होते हैं, है ना, वो मांसाहार करना, व्यभिचार करना, नशा करना, जुआ खेलना, ऐसे हो सकता है अपने प्रवृत्ति के कारण, ऐसे वर्णन हुआ है भक्तों में। ऐसे ट्रेसेस ऑफ इन द बिगिनिंग देर में भी सम ट्रेसेस ऑफ सिन ऐसे हुआ। तो ऐसे भक्त को भी ऐसे वो लगा है, ऐसे भक्त को भी क्या करना चाहिए? हमें साधु समझना चाहिए, क्योंकि वो भजते माम अनन्य भाव, भगवान कृष्ण को अनन्य भावना से भक्ति कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के ऊपर प्रवचन कर रहे थे, 26 सेकंड एवेन्यू न्यूयॉर्क, जहाँ पर पहला इस्कॉन का केंद्र आरंभ हुआ। उस केंद्र के अध्यक्ष थे ब्रह्मानंद प्रभु। प्रभुपा जी कहते हैं, अभी कल ब्रह्मानंद प्रभु ऐसे सिगरेट फूंकते आ गए तो भी उनको साधु समझना चाहिए, ऐसे कहते हैं। ऐसे कहते हैं साधु रेव समितव्य, क्योंकि सम्यक व्यवस्थित है, क्योंकि वो सही मार्ग में स्थित है। यहाँ पर एक श्लोक उल्लेख कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद, और उसके पहले प्रभुपाद जी बोल रहे हैं साधु रेवा, मतलब ये वो शब्द उपयोग करके भगवान क्या बोल रहे हैं, बहुत ही जोर से बोल रहे हैं उनको साधु समझना ही चाहिए, क्योंकि वो मेरे भक्त है, ऐसे वो ऐसे छाती के ऊपर वो मार रहे हैं, मेरे भक्त है करके उनको मानना ही पड़ेगा, ऐसे जोर से बोल रहे ऐसे साधु रेवा मंतव्य। और मंतव्य शब्द और भी जोर से है बोलते, साधु रेव जोर से है और मंतव्य और भी जोर से है, वो निश्चित ही साधु है और उनको मानना ही पड़ेगा, ऐसे बोलो प्रभु, है ना तात्पर्य में। और वो नरसिंह पुराण से श्लोक उल्लेख कर रहे हैं, भगवती च हरावनन्य चेता भ्रशो मलिनोपि विरजाते मनुष्यः नहि शशा कुलुष छवि कदाचित तिमिर पराभवताम उपैति चंद्रः। तो इसका अर्थ है, द्रौपदी कहते हैं, कहने का अर्थ यह है, यदि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य करता है, करता पाए जाते जाए तो इन कार्यों को उन दब्बों की तरह मान लेना चाहिए, जिस प्रकार चांद में खरगोश की दब्बे हैं, इन दब्बों से चांदनी की विस्तार में बाधा नहीं आती। इसी प्रकार साधु पद से भक्त का आकस्मिक पतन उसे निंदनीय नहीं बनाता, ऐसे कहते हैं, आकस्मिक पतन उसे निंदनीय नहीं बनाता है, कुछ बाधा नहीं आता है उसकी भक्ति भाव में, कोई बाधा नहीं आता है, जैसे चांदनी प्रकाश देने में कोई बाधा नहीं आता है, ऐसे ही वो भक्ति भावना में कोई बाधा नहीं आता, ऐसे कहते हैं। तो कभी कभी ऐसे होता है, बहुत सारे साधु लोगों को, ऐसे साधु होते हैं वो पकड़े जाते हैं कुछ ऐसा, वो आशाराम बाबू या तथाकथित जो नित्यानंद परमहंस वगैरह दक्षिण भारत में, वो पकड़े जाते हैं ऐसे, तो उनको भी साधु मानना चाहिए? नहीं मानना चाहिए, वो आरंभ से ही असाधु है। क्योंकि पहला चीज क्या है, वो लोग भगवद गीता यथारूप को प्रचार नहीं करते। हम लोग चर्चा किया ना, गुरु मतलब कौन होता है जो भगवद गीता यथारूप को प्रचार करता है, वो गुरु का लक्षण। पहले से ही वो भगवद गीता यथारूप को प्रचार नहीं करते, इसलिए वो क्या है, वो असाधु है। तो ये पकड़ा जाना तो ये बाद की बात है, पहले से आरंभ से ही वो लोग साधु नहीं है, तो असाधु आरंभ से ही असाधु है। अभी श्रील प्रभुपाद अंत में कहते हैं कि लेकिन भक्त को ये श्लोक को क्या करना चाहिए, फायदा नहीं उठाना चाहिए। वो हाँ मुझे साधु माना जाएगा और मैं करते रहूंगा, ऐसे नहीं समझना चाहिए। इसलिए सहजीय लोगों को वो भक्ति करते करते प्राकृत सहजीय करके अपसंप्रदाय है। कई सारे अपसंप्रदाय है, सबको सहजीय प्राकृत सहजीय कहते हैं। एनी डिविएशन इज कॉल्ड एज प्राकृत सहजीय, ऐसे चैतन्य चरितामृत में कहा गया। कोई भी जो डिविएशन होता है वो प्राकृत सहजीय है। तो वो लोग पाप में लग जाते हैं, पाप भक्ति करते रहते हैं, अपने आप को वैष्णव बोलते हैं, भगवान का भक्त बोलते हैं, और उसके साथ साथ पाप कर्मों में लगे रहते हैं, तो उनको साधु नहीं मान सकते। यहाँ पर ऐसे टेम्पररी एक्सीडेंटल क्या बोलते हैं, दुर्घटना क्या बोलते हैं उसको, एक्सीडेंटल दुर्घटना से कोई पतन होता है, उसको उनको साधु माना चाहिए। जो जानबूझकर जो पाप कर्म में लग जाते हैं उनको साधु नहीं मान सकते। तो जब अजामिल का पतन हो गया वो क्या है, दुर्घटना पूर्वक पतन है, वो साधु अजामिल। लेकिन जो जानबूझकर वो पाप करते हैं, ऐसे सहज या प्राकृत सहज या, वो लोग नरक में जाते हैं। तो हमें वो देखना चाहिए कौन सा दुर्घटना वाला है, कौन सा डेलिबरेट एक्ट है। डेलिबरेट एक्ट मतलब जानबूझ के खड़े करना। तो पहले से ही उसके ऊपर ध्यान करके जो पाप कर्म में लगा जाता है या जिसका पतन हो जाता है उसको दुर्घटना पूर्वक पतन नहीं बोला जा सकता। दुर्घटना मतलब उसके ऊपर पहले ध्यान नहीं करते पतन होने के लिए, तो उसको दुर्घटना कहते हैं। समझ में आ गए, ये दोनों के अंतर, दो तरह के जो पतन होते हैं, यहाँ पर दो तरह के पतनों का वर्णन किया जा रहा है। एक है डेलिबरेट एक्ट, जानबूझ के करना वो पतन होना, और दूसरा है दुर्घटना, एक्सीडेंटल दुर्घटना पूर्वक। जो दुर्घटना से पतन होता है उनको साधु मान सकते हैं, लेकिन जो जानबूझ के करते हैं उनको साधु नहीं मान सकते। इसलिए भक्त को बहुत ही जागरूक रहना चाहते हैं। किंतु इसी के साथ यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि दिव्य भक्ति करने वाला भक्त सभी प्रकार के निंदनीय कर्म कर सकता है। इस श्लोक में केवल इसका उल्लेख है कि भौतिक संबंधों की प्रबलता के कारण कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। भक्ति तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए प्रयत्न पर्याप्त प्रबल बलशाली नहीं होता तब तक आकस्मिक पतन हो सकता है, किंतु बलवान होने पर ऐसे पतन नहीं होता। जैसे ही पहले कहा जा चुका है, मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए अशोभनीय कर्म नहीं करना चाहिए, और यह नहीं सोचना चाहिए कि इतने पर भी वह भक्त बना रहता रह सकता है। यदि वह भक्ति के द्वारा अपना चरित्र नहीं सुधार लेता तो उसे उच्च कोटि के भक्त नहीं मानना चाहिए। भक्ति करते करते अपने चरित्र सुधारना चाहिए, कैरेक्टर बदलना चाहिए, वो भक्त है, वो भक्ति में लगा रहता। तो ऐसे करते करते जाएंगे तो वो नहीं। इसलिए प्रभुपाद इस श्लोक को अच्छी तरह से समझना चाहिए, ठीक से समझना होगा, ऐसे श्लोक प्रभुपाद आरंभ में कहते हैं। तो फिर भी जो भक्त लोग हैं जो बहुत ही अनन्य भाव से लगे हुए हैं, कभी ऐसे करते हैं तो भी उनको साधु मानना चाहिए। तो इसलिए ये भी एक ये चीज़ है, कैसे भक्ति श्रेष्ठतम योग पद्धति है। कोई भी शास्त्र में भक्त को, ऐसे भक्तों को निंदा नहीं किया गया, लेकिन अन्य लोगों को हमेशा निंदा किया गया शास्त्रों में। भक्तों को कभी निंदा नहीं किया गया। ठीक है, श्लोक क्रमांक। एक बार ऐसे हो गया, इस्कॉन में एक वरिष्ठ भक्त का पतन हो गया। प्रभुपाद जी उन्होंने बहुत अच्छे भक्त थे, बहुत प्रचार किया था उन्होंने। फिर वो एक समय पर वो नियमों को पालन नहीं, संन्यास लिया था उन्होंने, नियमों को पालन नहीं कर पाए, तो वो दुखी होकर उन्होंने क्या किया, अपना दंडा और जो ये जो गैरवे वस्त्र है वो प्रभुपाद जी को वापस भेज दिया पोस्ट से। माफ़ कीजिए, मुझे नहीं हो सकता है ऐसे। लेकिन वो करने से पहले ही क्या कर, ऐसे उन्होंने भेज दिया एक और, दूसरी ओर एक दूसरा भक्त ने क्या कर दिया, वो सब जगह उसको फैला दिया कि इसका पतन हो गया, पतन हो गया, पतन हो गया करके। प्रभुपाद जी उसके ऊपर बहुत गुस्सा हो गए, ये मेरा और मेरे शिष्य के बीच में है, तुम इसको बीच में नहीं आना चाहिए ऐसे। प्रभुपाद जी बहुत उसको क्या कर दिया, डांट दिया। तो ऐसे कहते, तो श्लोक क्रमांक 31। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानेहि न मे भक्त प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। तो ऐसे बहुत ही शीघ्र धर्मात्मा बन जाता है और शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। शाश्वत शांति को प्राप्त करता है क्योंकि वो सही मार्ग में सम्यक व्यवस्थित हो ही था, पिछले श्लोक में आता है ना कि वो सम्यक, तो परिपूर्णतया संकल्प वाला है निश्चित ही, तो इसलिए सही मार्ग में सही संकल्प से वो लगा रहता है, बहुत ही शीघ्र वो धर्मात्मा बन जाता है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं कि उसको कोई प्रायश्चित भी करना नहीं पड़ता है। कभी कभी ऐसे प्रायश्चित करने के लिए कोई हम पाप करते हैं तो वेदों में ऐसे प्रायश्चित बताए गए। तो एक बार ऐसे हुआ ना, चैतन्य महाप्रभु के एक अनुयायी थे, सत्यराज खान, कौन है वो, सत्यराज खान। तो वो बहुत अमीर व्यक्ति था, उसके 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 घर में एक मुसलमान सेवक था। वो जब भी सेवा ठीक तरह से नहीं करता तो वो पिटाई करते थे। वो पहले चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी थे, बहुत अमीर व्यक्ति थे, बहुत पिटाई करते थे। बाद में जाके वो सेवक जो है वो अमीर बन जाता है और वो राजा बन जाता है मतलब। तो उसको देखकर उसके रानी जी है, उन्होंने देखती है उसके पीठ के ऊपर ऐसे बहुत सारे ऐसे चिन्ह हैं पिटाई के, ये क्या है ऐसे पूछते हैं। वो बताते हैं ऐसे हुआ तक, तो अभी आप क्या करना चाहिए, उसको मारना चाहिए, उसको मुसलमान बना देना चाहिए ऐसे बोलते हैं। फिर वो जाके उसको मुसलमान बना देते हैं, ऐसे पानी फेंक देते हैं। तो अभी शुद्ध होने के लिए ये सत्यराज कांड क्या करता है, घर सब त्याग करके चला जाता है। अभी शुद्ध होने के लिए क्या करना चाहिए, वो ब्राह्मणों के पास, मायावादी असमार्थ ब्राह्मणों के पास जाता है। आपको ऐसे उबलता हुआ घी पीना चाहिए ऐसा बोलता है, इसका अर्थ है मर जाना चाहिए, उसको पी के फिर से ब्राह्मण परिवार में जन्म ले सकते हो ऐसे, ये प्रायश्चित बताया। वो नेहरू भी आके जो काशी के जो शंकराचार्य है वाराणसी के शंकराचार्य को पूछा था, जो ये मुसलमान जिनको कन्वर्ट किया गया था वो फिर से हिंदू बन सकते हैं क्या ऐसे, उसने नहीं बोला उसने, नहीं तो बहुत सारे ऐसे ऐसे समस्याएं हो नहीं होते थे। तो ये लोग भी उनको ऐसे बताया, फिर जाके चैतन्य महाप्रभु को मिले वो, फिर चैतन्य महाप्रभु उनको बोले वृंदावन में जाके हरे कृष्ण महामंत्र जप करो ऐसे। तो सत्यराज कारण वृंदावन में जाते, ऐसे कई सारे प्रायश्चित होते हैं, लेकिन ये प्रायश्चित भी भागवत में वर्णन हुआ है। क्या है प्रायश्चित? ये हाथी के समान, हाथी के स्नान के समान, ऐसे बताया। तो परीक्षित महाराज जब ये 28 नरकों के बारे में वर्णन सुना, छठे स्कंद के आरंभ में वो पूछते हैं कि क्योंकि वो वैष्णव है, उनके ऊपर दबी सभी जीवों के ऊपर दया आता है, कैसे इन जीवों को नरक जाने से बचा जा सकता है। तो अलग अलग वो प्रक्रिया बताते हैं सुखदेव गोस्वामी। पहले वो प्रायश्चित का वर्णन करते हैं, फिर परीक्षित महाराज उसको नकार देते, ये क्या प्रायश्चित है, ये हाथी के स्नान के समान, आप प्रायश्चित करोगे फिर वाके फिर से पाप करोगे फिर प्रायश्चित करोगे, जैसे ईसाई लोग ना करते हैं ना, पाप करता है और वो गिरिजाघर में जाकर वो फादरी के सामने क्या करेंगे, प्रायश्चित करेंगे और वापिस आके फिर से पाप करेंगे, और वो प्रचार भी करते हैं उसका कि जीसस क्या है, आपका पाप को पाप से मुक्त करेंगे ऐसे करके। तो जीसस ने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लिया है क्या, तो आप पाप करते रहो, और प्रभुपाद जी कहा करते हैं रिपेंट सिनर्स, रिपेंट करेंगे और बाद में फिर से पाप करेंगे, रिपेंट करेंगे बाद बेशरम, ऐसे बोला करते प्रभुपाद जी, रिपेंट सिनर्स। तो रिपेंटेंस, असली रिपेंटेंस, प्रायश्चित क्या होता है, फिर से वो पाप कर्म नहीं करेंगे उसको, ऐसे। तो इसको एक हाथी के स्नान को तुलना किया, हाथी बहुत अच्छी तरह से अपने सूंड से क्या करेगा, पानी शरीर के ऊपर, आप जानते हैं ना हाथी ऐसे वो करते हैं, वो अपने सूंड से वो स्प्रे मारते हैं वो बहुत अच्छा वो स्नान करते हैं, ऐसे स्नान करके क्या करते हैं, वापिस आके मट्टी में लौट लेट लेते। तो ये स्नान करने का क्या लाभ हुआ, ऐसे बोलते, तो ऐसे ही क्या लाभ हुआ, या दूसरे शब्दों में प्रायश्चित है वो, उसका कभी कभी लाभ होता है, थोड़ा थोड़ा होता है वो पाप को निकल, लेकिन पाप करने की जो प्रवृत्ति है उससे मुक्त नहीं करता है, इसलिए सिर्फ बाद में वो ज्ञान तपस्या अन्य चीजों को भी बोलते, लेकिन परीक्षित महाराज उसको नकार देते। केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायण अगम गुणवंती कार स्नेह निहारम इव भास्कर, सिर्फ भक्ति से क्या है, जैसे वो सूरज के पहले जो किरण है वो सभी जो कोरा कोरा क्या बोलते हैं, कोरा ना वो उसको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, दूर भगा देते हैं, वैसे ही भक्ति के आरंभिक अवस्था भी क्या है, सभी पापों को जड़ से निकाल देता है, पाप करने की प्रवृत्ति भी निकाल देता है। तो पाप करने की प्रवृत्ति कहाँ से आता है, हम लोग चर्चा कर रहे थे कल, तो वो अप्रारब्ध कूट बीज से आता है, तो वो सब नष्ट हो जाते हैं भक्ति करने से। तो ऐसे परीक्षित सुखदेव गोस्वामी उनको कहते हैं। तो इसलिए रूप गोस्वामी भी भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन किया, जो भक्ति में लगे हुए उनके लिए कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं, ऐसे कुछ पाप हुआ तो भी वो अपने आप शुद्ध हो जाए, भक्ति प्रायश्चित का सर्वोच्च या सर्वोच्च प्रायश्चित का मार्ग है, अपने आप में वो प्रायश्चित है। लेकिन इसको फायदा उठाते हुए हमें पाप करते रहे नहीं रहना चाहिए, अपना चरित्र को बदलना चाहिए, जैसे बताया गया। वो ऐसे पाप करते रहेंगे तो क्या हो जाता है, वो सातवा नाम अपराध होता है ना, क्या है सातवा नाम अपराध, नामनो बलाधि ऐसे ही पाप बुद्धि, नामनो बला जैसे ही पाप बुद्धि, तो नाम के बल पर पाप करना, भगवान की कृपा को फायदा उठाना, उनके लिए क्या गति होगा, वो 10 नाम अपराधों को वर्णन करने के बाद पद्म पुराण में अंत में बताता, जो नाम के प्रति अपराध करते हैं, जो भगवान के प्रति अपराध करते हैं, उन नाम उच्चारण करने से सभी मुक्त हो जाते हैं, सेवा अपराध होते हैं ना, लेकिन नाम के प्रति जो अपराध करते हैं उनको नरक का गति होता है और कोई गति नहीं है। तो नाम के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, वो अंतिम कृपा है भगवान का नाम उच्चारण करना। तो ऐसे हमें तो साधु रेवस क्या हो जाना चाहिए, वो मुक्त होना चाहिए। और यहाँ पर भगवान कौन्तेय प्रतिजाने ही नमे भक्त प्रणश्यति, तो वो तुरंत क्या हो जाते हैं, साधु धर्मात्मा बन जाते हैं। हे कुंती पुत्र, निडोर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे, आप इसका घोषणा करो, बोलते क्यों बोल रहे अर्जुन को, आप इसको घोषणा करो बोल रहे, क्योंकि जो भगवान बोलते तो वो सर्वोच्च वाक्य है ना, वो सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ नॉलेज, ज्ञान के सर्वोच्च अधिकारी है वो। तो फिर भी ये किसको घोषणा, अर्जुन को घोषणा करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कभी कभी भगवान अपना जो वचन है वो रखते नहीं है वो। इसलिए लोग वो जो बोलते हैं वो नहीं मानेंगे, भगवान का जो बोलते हैं वो तो मानना ही पड़ेगा हम लोग। कभी कभी ऐसा होता है, उनकी लीला में ऐसे होता है, कोई उदाहरण जो उन्होंने वचन लिया था वो तोड़ दिया उन्होंने, युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ऐसे उन्होंने वचन दिया था युद्ध के पहले। लेकिन क्या किया उन्होंने, युद्ध के समय वो शस्त्र उठा लिया। और वो तो ठीक है, हम लोग चर्चा किया था उसके बारे में पहले, कि वो भीष्मदेव कहते हैं अपने भक्त को रक्षा करने के लिए या मेरे वचन को पूर्ण करने के लिए अपना वचन उन्होंने तोड़ दिया करके, ऐसे भीष्मदेव कहते हैं बाद में। लेकिन यहाँ पर भगवान पहले ही इसलिए बोल रहे थे आप घोषणा करो, क्योंकि वो पहले सोच लिया था मैं ये वचन को तोड़ने वाला हूँ करके। तो ऐसे घोषणा करते हैं। और भक्त क्या हो बताते हैं, क्या घोषणा करने के लिए बोलते हैं, नमे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है, ऐसे कहते हैं। तो रूप गोस्वामी भी वो वर्णन करते हैं साक्य भक्ति का, नवविधा भक्ति में एक भक्ति क्या है, साक्य भक्ति। ये साक्यम और साक्य रस अलग है, दोनों समझ में आ गया। साक्य रस क्या है, वो भगवान के दास भावना में क्या करना, नहीं मित्र के भाव में प्रेम करना, वो रस सिद्ध भक्ति है, वो प्रेम है। ये है साधना का अंग साक्यम, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु स्मरणम पाद सेवम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम आत्मनिवेदन। और साक्य में दो प्रकार के होते हैं, ऐसे रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, एक है विश्वास और दूसरा मैत्री। मैत्री का अर्थ होता है भगवान का वेल विशर बनना, समझ में, वेल विशर शुभ चिंतक बनना। भगवान सबके शुभ चिंतक है, कि भगवान का कैसे हम लोग शुभ चिंतक बनेंगे, हम क्या करेंगे उनका शुभ कार्य उनके लिए। वो प्रचार करते हैं भगवान को, भौतिक जगत में लोग भगवान को क्या करते हैं, नकारते हैं। तो या भौतिकवादी लोग ऐसे, नास्तिक लोग ऐसे भगवान के विरुद्ध कुछ अलग अलग अनाप शनाप बकते रहते हैं, तो उनको खंडन करना, वो भगवान के वेलवेश्वर बनने के समान, शुभ चिंतक बनने के समान। तो उसको मैत्री कहते हैं। और दूसरा विश्वास, विश्वास का अर्थ है भगवान हमें रक्षा करेंगे करके विश्वास करना, वो शरणागति का एक अंग है ना, रक्षिष्यति इति विश्वास हो, तो भगवान हमें रक्षा करेंगे करके ऐसे विश्वास करना। तो श्रील प्रभुपाद इसको वर्णन करते पहले अध्याय में भगवद्गीता में, सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत् नवश्च प्रतिबिम चैव तुमुलोभ्यानुनादयन्। जब कौरवों ने पांडवों के शंख नाद का आवाज, शंख ध्वनि के शंख का आवाज सुना, शंख बजाने का आवाज सुना, वो इतना नवश्च प्रतिबिम, ये पृथ्वी से लेकर आकाश तक फैल गया, जिसके कारण धार्तराष्ट्रस्य पुत्र, यू नो सघोषो धार्तराष्ट्र हृदयानि विदारयत्, हृदय में कंपन होने लगा धार्तराष्ट्र के पुत्र कौरव उनके हृदय में। तो श्रील प्रभुपाद उस तात्पर्य में लिखते हैं, जब पांडवों ने कौरवों का शंख बजाने का आवाज सुना तो उनके अंदर ऐसे कुछ लक्षण नहीं हुए, ऐसा कोई वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन कौरव में ऐसे हुआ। क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि कौरव भगवान का भक्त नहीं थे, क्यों? और पांडव भगवान के भक्त थे और उनको भगवान की रक्षा में विश्वास था, इसके कारण क्या हुआ, उनके अंदर ऐसे भय जागृत नहीं हुआ, लेकिन कौरवों में भय जागृत हुआ, इसको विश्वास कहते हैं। रूप गोस्वामी जब वर्णन कर रहे थे वो एक महाभारत से श्लोक उल्लेख करते हैं, वो श्लोक द्रौपदी बोलती है, प्रतिज्ञा तद गोविंद नमे भक्त प्रणशति इति संस्कृत्य संस्कृत्य प्राणान संधारे अम्यहम। तो वो ये श्लोक का उल्लेख कर रहे हैं, प्रतिज्ञा तव गोविंद, आपने प्रतिज्ञा किया, क्या प्रतिज्ञा किया है, नमे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो इति संस्मृत्य संस्मृत्य, इसको स्मरण करके मैं अपने प्राण को बना के रख रही हूँ, ऐसे प्राणान संधारे अम्य, क्यों कि उतना क्या हो गया था उनको, क्या नहीं हुआ था इतना हुआ था, प्रभुपाद जी वहाँ वर्णन करते हैं कि जब भीष्म देव जो शरशैया में थे तब पांडव उनको मिलने के लिए आए भगवान कृष्ण के साथ, वो वहीं पर भगवान को प्रार्थना करते हुए, भगवान को दर्शन करते हुए, स्मरण करते हुए शरीर त्याग देते हैं ना, तो उस समय जब पांडव उनको मिलने के लिए आए, भीष्मदेव द्रौपदी जी कहते हैं आजीवन ब्रह्मचारी और महान योद्धा, वो भी रोने लगे उनकी स्थिति को देखकर। अभी तो वो प्रसन्न हो गए थे क्योंकि वो युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए, लेकिन उनको देखकर आपको कितने सारे तकलीफ झेलने पड़े, ऐसे रोने लगे। तो आजीवन ब्रह्मचारी और महान योद्धा का क्या अर्थ होता है, क्यों ये ऐसे लिख रहे द्रौपदी? जो आजीवन ब्रह्मचारी रहता है वो ऐसे इमोशनल नहीं हो सकता, कोई माता आके आपको रोने लगी तो तुरंत आश्रय दे दे, आश्रय दे देना, ऐसे सेंटिमेंटल इमोशनल वो नहीं चलता है, थोड़ा अनासक्ति मतलब उसको हृदय की कठोरता जरूरत होती है। हालांकि भक्ति में हृदय कोमल होना चाहिए, लेकिन ज्यादा ही कोमल हो गया हृदय मतलब ऐसे भौतिक आसक्ति बढ़ जाएगा, तो अनासक्ति का जरूरत होता है ऐसे। तो इसलिए हाँ मैं ऐसे एक स्त्री को आश्रय दूंगा, उसका कोई आश्रय नहीं है, ऐसे ब्रह्मचारी नहीं रह सकते, हृदय की कठोरता हो मुझे। तो या हृदय, इसको हृदय दौर्बल्यम कहते हैं ना, तो क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम क्लैब्यम स्मगम पार्थ नहीं तत्व्युपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोतिष्ठ परंतप। कृष्ण अर्जुन को बोल रहे थे ये छोड़ दो ये हृदय दुर्बलता को, क्या क्या है, भौतिक मोह है, वो भौतिक आसक्ति और मोह है, तो मोह के कारण एक व्यक्ति ऐसा मोह है तो हृदय में या दुर्बलता है तो एक व्यक्ति आजीवन ब्रह्मचारी नहीं रह सकता, और विशेष करके क्षत्रियों में ब्रह्मचारी होना ये विरला चीज है, इसलिए उनको भीष्म कहते हैं, उन्होंने भीषण व्रत को लिया उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने के लिए, है ना। तो ऐसे आजीवन ब्रह्मचारी और महान योद्धा क्षत्रियों को ये प्रशिक्षण दिया जाता था कि हमेशा वो क्या करना चाहिए, वो रक्त को युद्ध भूमि में रक्त को देकर वो रोना शुरू नहीं करेंगे, उनका हृदय कठोर होता है, इसलिए आरंभ से उनको प्रशिक्षण दिया जाता है कैसे हत्या करना चाहिए दूसरों को। वो जंगल में जाके जो बहुत ही क्रूर पशु होते हैं उनको उनको उनके साथ वो युद्ध करते हैं, वो शिकार करते हैं, उनको युद्ध करते हैं, आमना सामना उनको यही प्रशिक्षण होता है, दूसरे अध्याय में चर्चा कर रहे थे हम लोग, तो ऐसे प्रशिक्षण होता है। तो प्रशिक्षण नहीं है तो कैसे होगा, वो रोना शुरू कर देगा, हाँ मर गया करके कोई वो हमेशा उनको दे शुड सी ब्लड फ्लोइंग, क्षत्रियों को ये रक्त खून बहता हुआ देखना चाहिए उनको हमेशा, तो वो प्रशिक्षण होता है। आजकल के नेता लोगों का क्या प्रशिक्षण होता है, वो लोग सिगरेट फूकना और ये जो मासूम चिकन और गोट्स होते हैं उसको खाते हैं वो लोग, ये प्रशिक्षण उनका। तो ऐसे आजीवन ब्रह्मचारी और महान योद्धा, जीवन में कई सारे युद्ध लड़े थे वो भी इनकी स्थिति को देखकर रोना शुरू करते, उनके नेत्रों में अश्रु आने लगे। तो इतने सारे उनको कठिनाइयों को झेलना पड़े थे पांडवों को, इसलिए क्या बोलते हैं द्रौपदी, आपको स्मरण करते करते मैं, या उस वचन को आपने वचन दिया है प्रतिज्ञात थव गोविंद नमे भक्त प्रणश्यति, तो ऐसे मैं ये प्राण को मैं बना के रख रही हूँ। तो ये उनका स्थिति है, उनको भगवान के ऊपर विश्वास रहता है। और कुंती महारानी तो और भी कहते हैं, कुंती महारानी क्या कहते हैं, लेट देयर बी मोर कैलामिटीज, और भी कठिनाइयां आ जाए ऐसा बोलते हैं। तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपनर्भव दर्शनम, क्या क्या है वो कैसे आरंभ होता है, तत्र तत्र जगत गुरु, तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपनर्भव दर्शनम, इट इज देयर इन दैट वर्स। तो और भी समस्याएं और कठिनाइयां आ जाए ताकि हम हमेशा आपका स्मरण करें। आपको स्मरण करने से क्या होता है, फिर से इस भौतिक भौतिक जगत को दर्शन नहीं करना, भवतो दर्शनम यत् स्यात्, भौतिक जगत को दर्शन नहीं करना पड़ेगा। कभी कभी हम लोग सोचते हैं क्यों ये सब आते हैं, हम भक्तों को भी कितना सारे ये तकलीफ क्यों आते हैं, ऐसा सोचते हैं। अच्छा है ना, भगवान हमें साक्षात्कार दे रहे हैं ना कि ये भौतिक जगत क्या है, दुख का स्थान है। तो ऐसे वो निस्सहाय भाव से, तभी हम लोग निस्सहाय भाव से भगवान को पुकारते हैं या स्मरण करते हैं, उसको ऐसे स्मरण करने से फिर इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ता है। ऐसे कुंती महारानी प्रार्थना कर रहे हैं, हम लोग शायद नहीं कर सकते ऐसे प्रार्थना, लेकिन वो कहते हैं सिर्फ आपका स्मरण होना चाहिए। तो सब कुछ ठीक है लेकिन स्मरण नहीं हो रहा है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है लेकिन भगवान का स्मरण हो रहा है वो ठीक है। तो ऐसे प्रार्थना करने के लिए बहुत सारा क्या होना चाहिए, गट्स चाहिए ना, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, हिम्मत चाहिए है ना। लेकिन ये सब ऐसे भक्त है प्रतिज्ञा तब गोविंद। तो श्लोक क्रमांक 32, मामि पार्ता व्यपाशित्या येपिषु पापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रास्ते यान्ति परां गतिम्। हे पार्थ, जो लोग मेरे शरण में शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्म स्त्री वैश्य व्यापारी तथा शूद्र क्षमे क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो ये भक्ति का महत्व है, मामी पार्थ व्यपाशित्य ये पिशु पाप योनि, पाप योनि में जन्म लेने के बाद भी वो स्त्री वैश्य और शूद्र ये भी है तो वो ऊंचा गति को परम गति परम धाम को प्राप्त करते हैं, ऐसे कहते हैं भगवान। तो जो वर्णाश्रम में निम्न योनि है, स्त्री निम्न योनि कहा गया है, क्यों स्त्री को निम्न योनि कहा गया है, क्योंकि वो भौतिक भोग से भोग का शरीर है बस, स्त्री का शरीर, इसलिए वो निम्न शरीर, सिर्फ भोग 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 और कुछ नहीं है जीवन में, इसलिए वो निम्न योनि कहा गया उसका। और वो भी है ना, वो इंद्र का पाप लिया था, एक चौथाई भाग पाप लिया था इंद्र का, आप जानते हैं ना। तो उसके बदले में उसको भोग करने की ज्यादा सुविधा प्राप्त हो गई, इसलिए वो निम्न नहीं होनी, पाप ही होनी। तो आप जानते हैं कि नहीं, वो इतिहास नहीं जानते हैं। तो इंद्र ने विश्वरूप का हत्या किया था, ब्राह्मण हत्या किया था, ब्रह्म हत्या के कारण वो उसको वो जो पाप है एक पिशाची के रूप में पीछे पड़ गया। बाद में
पांच जगह बांट दिया था, फिर खोल दिया, चार
सो या तो वो पिशाची के रूप में पड़ी थी। तो लंबे समय तक वो क्या किया, उन्होंने पानी में छिपे रहे हो, लेकिन वहां पर भी क्या नहीं, उनको कुछ अन्न नहीं मिल रहा था, बहुत सारा समस्या हो गया। तो उसके बाद में ऐसे कुछ व्यवस्था हो गया कि कोई इनको पाप लेते हैं तो वो मुक्त हो जाएंगे। तो चार लोगों ने पाप कर लिया, पृथ्वी ने लिया, उस पाप के कारण पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे रेगिस्तान हुए। तो उसके बदले में उनको क्या आशीर्वाद मिला कि जो भी क्या है खड्डा जो होते हैं वो बंद हो, साफ हो जाते हैं, और पेड़ लिए वो जब भी काटा जाता है वो और भी बढ़ते जाएंगे, वो आशीर्वाद मिल गए। और उसके साथ साथ पाप लेने के कारण क्या हो गया, वो उससे क्या बोलते हैं उसको, सैक, सैप, सैप हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, ऐसा कुछ निकलता है ना वो पेट से,
कुंद,
कुंद या ओके गोंद। उसको और पानी लिया, पानी में बुलबुले आने लगे, वो बुलबुले या फोम आता है तो फेन, वो योग्य नहीं है पीने के लिए और पूजा के लिए। आजकल वो चिल्ड वाटर या क्या बोलते हैं कार्बोनेटेड वाटर वो पीते हैं, वो सभी इंद्र का पाप ले रहा है बस। और स्त्री ने भी लिया, तो स्त्री को वो जितना जब भी चाहे वो भोग कर सकती है, ऐसे उसको आशीर्वाद मिला। विशेष करके गर्भवती समय में भी वो मैथुन कर सकती है, ऐसे कुछ उनको आशीर्वाद मिला। और उसके कारण वो जो उनका वो दूषित समय होता है ना हर महीने में, ऐसा शुरू हो गया। तो चार लोग पाप योनि, स्त्री हो वैश्य, पानी पानी जिसमें वो पानी को मिलाया जाता है उसका गात्रा बढ़ जाता है, ऐसा डेंसिटी ऑफ अदर सब्सटेंसेस विल इंक्रीज बाय पुटिंग वाटर इन दैट, ऐसे कुछ मिल गए। तो ये चार एनी वे पाप योनि है, और वैश्य को भी पाप योनि बताया गया क्योंकि वैश्य लोग झूठ बोले बिना वो अपना वैश्य धर्म को पाल नहीं, विशेष करके वैश्य में अलग अलग होते हैं। कृषि, कृषि तो नोबलेस्ट ऑक्यूपेशन बोलते हैं प्रभुपाद जी, लेकिन जो ये लोग वाणिज्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनको झूठ बोले बिना वो क्या नहीं हो सकते, कोई उनका वो अपना ऑक्यूपेशन ही नहीं चला सकते। मैं आपका मित्र हूँ इसलिए मैं आपसे कुछ लाभ नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बोलेगा, लेकिन 50% लाभ करेगा वो। ऐसा झूठ नहीं बोलेंगे तो चलेगा नहीं, तो ऐसे उसके अनुमति है। हाँ, लेकिन ज्यादा ब्लैक मार्केट में नहीं लगना चाहिए वो लोग वैश्यों को, ऐसे 16वें अध्याय में बताया गया है, थोड़ा बहुत झूठ बोल सकते हो, इसलिए उनको पाप योनि बताया, निम्न योनि ऐसे। और उसके कारण देखिए आप वैश्य वैश्य वो जो भी बोलते हैं उसको मान नहीं सकते हम लोग। हाँ, वो लोग बहुत ऐसे झूठ बोलते रहते हैं, भक्तों में भी ऐसे होता है कभी कभी, वो लोग जो वैश्य बैकग्राउंड से आते हैं ना वो बहुत झूठ बोलते रहते हैं। कुछ ना कुछ अलग ही चीज बोलते हैं, कारण बोलते हैं आपको, आप क्यों आए, आए नहीं है कुछ और कारण बता रहे हैं। प्रवृत्ति रहता झूठ बोलने का, है ना, इसलिए वो पापी। शूद्र भी पापी नहीं है, कोई उनके लिए कोई प्रशिक्षण नहीं होता है ना, वो प्रशिक्षण नहीं लेना चाहते हैं। शूद्र में शूद्र लोग ऐसे पाप क्रिया कर देते हैं, शराब पीना ये सब करना उसे। लेकिन वो लोग भी क्या है, वो लोग भी क्या है, भगवान का आश्रय ग्रहण करने से परम गति को प्राप्त कर सकते हैं, व्यपाश्रित्य। तो ये शब्द बहुत, मनुष्य को पूर्णतः कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, तब वह बड़े से बड़े ज्ञानी तथा योगी से भी महान बन सकता है। तो प्रभुपाद जी तो एक और कदम, ये तो ये चार वर्णाश्रम में आते हैं, वर्णाश्रम में जो आते हैं वो सभ्य लोग हैं, उनका प्रगति होता रहता है धीरे 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 धीरे। लेकिन जो वर्णाश्रम के नीचे है वो लोग भी भगवान का शरण ग्रहण करेंगे तो परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे कई योनि हैं, उनको क्या कहते हैं, नहीं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, मिश्र योनि, मिश्र जाति, मिश्र योनि, और दूसरा क्या है, निम्न योनि। भागवत में क्या है उनका, उनके लिए कुछ ऐसा कुछ नियम है, कुछ नाम है। तो वो लोग जो लोग वर्णाश्रम के बाहर है, वर्णाश्रम के नीचे है, तो इनका भी कई लोग होते हैं। किराट अभनंद्र पुलिंद पुलकश आवीर सुम्बा, यू सेकेंड कैंटो, एनी वे किराट अभनंद्र पुलिंद पुलकश आवीर सुम्बा यवनाक साधया ये अन्ये च पापा यदपश्यशाय शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। प्रभुपा जी ये श्लोक बता रहे हैं यहाँ पर, वो उल्लेख तो नहीं किया उन्होंने लेकिन वो बता रहे हैं वहाँ पर। तो ये दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय का 18वां श्लोक, चौथे अध्याय या तीसरा अध्याय। तो ऐसे ऐसे कई योनि हैं, कई जाति के लोग हैं, वो वर्णाश्रम में नहीं आते, वो बहुत ही पतित योनि हैं। किराट अभनंद्र, किराट अभन आंध्र पुलिंद पुलकश आवीर शुंभा यवन घसादा, ये सब चीज प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में इन सबका वर्णन करते हैं, ये कौन कौन है करके। कसादा मतलब जिनके मुंह के ऊपर मूंछ नहीं आता है, जैसे चाइनीज जापानीज लोग होते हैं ना, हम वो कसाद लोग हैं। और यवन मतलब ग्रीस के लोग, मुसलमान लोग, म्लेच्छ मांस खाने वाले लोग, तो म्लेच्छों का यवन में आ जाते हैं वो लोग, म्लेच्छ यवन। तो मुसलमान लोग उनको यवन, तुर्क या मुसलमान लोग, तो इनके बारे में भी वर्णन आता, महाभारत में वगैरह बहुत वर्णन आता है ये सभी जातियों के बारे में। तो ये सब लोग क्या है, निम्न योनि, ऐसे लोग भी भगवान का शरण ग्रहण करते हैं तो वो भी परम गति को प्राप्त होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण ना, ये तो मनुष्य जाति है, कभी कभी ऐसे मनुष्य निम्न जाति में भी जन्म लेते हैं, उनको भी लेते हैं। असुर जाति में प्रहलाद महाराज जन्म लिए है ना, तो विदुर शूद्र में जन्म लिया उन्होंने, ऐसे कई उदाहरण। हनुमान जी तो मनुष्य भी नहीं है, वो तो वानर है ना। तो कोई भी भगवान का आश्रय ग्रहण करते हैं तो वो परम गति को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि उनको ऊंचा गति में जन्म लेना चाहिए। तो जब श्रील प्रभुपाद वृंदावन में थे, कुछ भक्त एक वहाँ पर एक मंदिर में गए थे, वृंदावन के कई मंदिर है ना, एक गोस्वामी मंदिर में गए थे, वहाँ पे एक ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो आप, ऐसे करते जाओ अगले जीवन में ब्राह्मण परिवार में जन्म लोगे, ऐसे बोले। तो जब भक्त लोग आके इसको बताया प्रभुपाद जी को, जाके उनके बोलो ऐसे ब्राह्मण वृत्ति करते 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 एक शायद एक जन्म एक जीवन में इस कौन में जन्म लोगे, ऐसे ऐसे प्रभुपाद जी। ऐसे लेकिन हम लोगों को भी ऐसे तथाकथित ब्राह्मण नहीं बनना चाहिए। हमने बताया ना, संन्यास लेना है नहीं है तो ब्राह्मण दीक्षा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, और क्या है? श्लोक क्रमांक 23-33। किं पुनर्ब्राह्मण पुण्य भक्त राजर्षयस्तता अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या है, अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरे प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ, ऐसे कहते। तो किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्य भक्ता राजर्षयस्तता, तो उनके बारे में तो क्या कहना है ना। इनके बारे में छठे अध्याय में हम लोगों ने देखा ना, शुचिनाम श्रीमताम गे है, योगिनाम धीमताम अभी सभी इनके बारे में वर्णन किया है। तो वो ये सब ब्राह्मण परिवार, भक्तों का परिवार, भक्ता राजर्षि उनके परिवार है ये सब, या अमीर जो श्रीमताम मतलब जो वैश्य भी होते हैं, वो भी मारवाड़ी लोग भी पहले जमाने में थोड़ा शुद्ध हुआ करते, लेकिन बाद में वो लोग भी पतित हो गए, बहुत ज़्यादा बिजनेस में घुस गए। तो अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। इस दुख में क्षणिक संसार में आपको लगाओ, क्या है ये प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। ओके, तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, मेरे प्रेमा भक्ति में लगाना चाहिए। अनित्यम असुखम लोकम, तो ये भौतिक जगत क्या है, क्षणिक और दुखमय है, संसार है। इसके पहले क्या बताया था तो भगवान ने इसके इसके बारे में, दुखालयम अशाश्वतम, वही चीज को फिर से यहां पर दोहरा रहे, दूसरी बार दोहरा रहे, ये भौतिक जगत क्या है। बहुत बार बताया जरा मरण मोक्षाय, तो क्षणिक सुख दुखमय संसार है भौतिक जगत। प्रभुपाद जी कहते हैं ये सबके लिए दुखमय है, इसलिए नहीं कि कुछ लोगों के लिए है और कुछ लोगों के लिए नहीं है। इस भौतिक जगत में लोग अमीर बनना चाहते हैं, अमीर बन के हम लोग क्या बनेंगे, क्या दुख ये जन्म मृत्यु से मुक्त होंगे क्या, नहीं होंगे। जब मृत्यु आ जाता है तो सबको एक समान, अमीर हो या गरीब हो, सब एक समान है। प्रकृति के नियम के सामने सब लोग एक समान है, कोई नहीं है। सो अनित्यम असुखम लोकम, और स्वयं भगवान इसको कह रहे, क्योंकि वो जानते हैं भौतिक जगत का लक्षण क्या होता है। क्योंकि जैसे इंजीनियर जानते हैं बिल्डिंग के कोने कोने में क्या है, क्योंकि उन्होंने डिजाइन किया, वैसे ही भगवान जानते हैं कि भौतिक जगत का क्या असली स्वभाव है। ये दुखा अनित्यम असुखम लोकम है, हम लोग इसको शाश्वतम या नित्यम सुखम लोकम बनाने के लिए यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद वो बोल रहे हैं कि कुछ दार्शनिक विशेष रूप से मायावादी कहते हैं कि यह संसार मिथ्या है, किंतु भगवद्गीता में हम यह जान सकते हैं कि संसार मिथ्या नहीं है, यह अनित्य है। तो यह असत इसलिए है क्योंकि यह अस्थाई है और अनित्य है। असत शब्द का अर्थ यह नहीं कि मिथ्या है, ऐसे ही असत का परिभाषा दिया था ना भगवान ने, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोर अपि दृष्टंतस त्वनयोः तत्वदर्शिनः। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बोल रहे हैं, यहाँ संसार अनित्य है किंतु एक दूसरा भी संसार है जो नित्य है, यह संसार दुखमय है किंतु दूसरा संसार नित्य तथा आनंदमय है। सो जन्म का अर्जुन का जन्म ऋषिकुल राजकुल में हुआ था, अतः भगवान मुझसे भी कहते हैं मेरी सेवा करो और शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्त करो। तो उनको क्या क्या है आश्वासन या ही इज कंफर्टिंग हिम या आपका गति क्या होगा? ऐसा गति नहीं होगा, क्योंकि आपने बहुत बड़े परिवार में जन्म, राजर्षि उनके परिवार में जन्म लिया है। इसलिए आप क्या करो, मेरे सेवा करो, शीघ्र ही मेरे दाम प्राप्त करो, ऐसे जल्दी आ जाओ। इमं प्राप्य भजस्व माम, मेरा भजन करके जल्दी मेरे पास आ जाओ, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद यह बोलते हैं, किसी को भी इस अनित्य संसार में रहना चाहिए में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह दुखमय है। कोई इस जगत में नहीं रहना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। हम लोग यही यहीं पर रहना चाहते हैं। हम उस दिन वो श्लोक उल्लेख कर रहे थे ना, सत्यम दिशत्यर्थितम अर्थितो मृणाम नैवार्थतो यत् पुनरर्थितो, अनिच्छन वो शब्द आता है ना उसमें। कोई इस भौतिक जगत में इच्छा नहीं कर रहे कि भगवान के धाम वापिस जाए, सब लोग इसी भौतिक जगत में रहना चाहते हैं, कोई इच्छा नहीं करते इस जगत में। लेकिन इस जगत में भक्त लोग चाहते हैं, श्रील प्रभुपाद जैसे जैसे भक्त लोग चाहते हैं कि हम लोग इस जगत में नहीं रहना चाहिए, इसलिए वो प्रचार करते हैं कोई यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी कहते हैं ना, दिस वर्ल्ड इज, दिस प्लेस इज नॉट फॉर जेंटलमैन, सभ्य लोगों के लिए ये जगत नहीं है, ऐसे कहते थे। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के हृदय में हृदय से लगाना चाहिए। इसका अर्थ क्या है, भजस्व माम, भजस्व मेरा भजन करो, वन शुड, ये बहुत अच्छा महत्वपूर्ण क्या है वाक्य प्रभुपाद, जिससे वो सदैव सुखी रह सके। भजस्व माम शब्द का महत्व बता रहे, वन शुड अटैच हिमसेल्फ टू द बोजम ऑफ द लॉर्ड। तो भगवान को, भगवान के हृदय को लगाना चाहिए, ऐसे बोल रहे। बहुत ही महत्वपूर्ण है ना शब्द ये वाक्य। ऐसे हमें भगवान की या भगवान की चरण कमलों को बहुत ही जोर से पकड़ लेना चाहिए। भगवान की चरण कमलों को तीव्रता से पकड़ लेने का क्या अर्थ होता है, उनकी शिक्षाओं को कभी त्यागना नहीं चाहिए, या उनकी भक्ति को कभी नहीं चाहना, भजस्व माम, उनके भक्ति को कभी नहीं त्यागना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र जप करना, सेवा करना, उनके बारे में श्रवण कीर्तन करना, कभी उसको त्यागना नहीं चाहिए किसी भी हालत में। वो पकड़ के, जटिलता से पकड़ के रखने का अर्थ होता है। या भगवान के हृदय को लगा के रखना चाहिए हमें अपने आप। दिस इज फॉर प्रॉपर। भगवत भक्ति ही एकमात्र ऐसी विधि है जिसके द्वारा सभी वर्गों के लोगों की सारी समस्याएं सुलझाई जा सकती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत स्वीकार करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। ये सभी समस्याओं को, भौतिक जगत के समस्याओं को, जो असली समस्या है जन्म मृत्यु जरा व्याधि समस्याओं को हल करने के लिए। मन मनाभव मत भक्तो मध्याजी मानमस्करो मामेवेश शिष्यं आत्मानं मत्परायणः। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। तो ये भगवद गीता का सार है। ये जो श्लोक हमारे वैष्णव आचार्यों ने इसे बताया है कि यह भगवद गीता का सार है। यहाँ पर ये श्लोक प्रभुपाद जी 1949 और 50 49 और 50 ईस्वी में 39 क्या है 49 उस समय पर अपने एक क्या थे गुरुबाई, उनके मठ में रहा करते थे। उन्होंने वानप्रस्थ ले लिया था, और उनके मठ से एक पत्रिका निकलता था। उस पत्रिका का नाम था गौड़ीय पत्रिका। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे उस समय भी एक पत्रिका था, उसका नाम था गौड़ीय था सिर्फ, बाद में ये गौड़ीय पत्रिका करके उनके शिष्य चला रहे थे। प्रभुपाद जी 2 साल उसके संपादक रहे, एडिटर। वो कई सारे ऐसे लेख लिखते थे उसके, उसमें वो ज्ञान का तलवार नामक एक बुक है ना ग्रंथ, वो बंगला भाषा में वो सभी लेख उन्होंने लिखा था, उसको अंग्रेजी में हिंदी में अनुवाद करके वो बुक छाप लिया। एक बार ऐसे हुआ, वो गौड़ीय मठ के ब्रह्मचारी कोई बाहर गए थे वो प्रचार के लिए या कुछ ध्यान मांगने के लिए, तो वापिस आए वो एक भगवद गीता का एक आवृत्ति लेकर आए, तो वो राधा कृष्ण ने उसके ऊपर टीका लिखा था भगवद गीता के ऊपर। राधा कृष्ण आप जानते हैं ना, भारत के प्रथम अध्यक्ष थे, वो कौन थे, राष्ट्रपति थे। तो वो सेकंड थे ना, मुझे भी ऐसा है सेकंड, दूसरा राष्ट्रपति थे बहुत ही। वो दक्षिण भारत है से है, वो चेन्नई से, बहुत बड़ा विद्वान थे वो, संस्कृत में भी बहुत पंडित थे वो। उन्होंने भगवद गीता के ऊपर टीका लिखा है अंग्रेजी भाषा में, उसका अनुवाद करके अंग्रेजी में उसके ऊपर टीका लिखा है, बहुत ही विद्वत्ता से उन्होंने लिखा है वो सब। लेकिन ये ब्रह्मचारी बहुत ही विचलित थे वो, क्योंकि उन्होंने जब ये भगवद गीता के इस श्लोक के ऊपर उनके टीका उन्होंने पढ़ा, वो बहुत ही विचलित हो गए, क्योंकि इसमें वो कहते हैं वो राधा कृष्णन कि आपको भगवान के शरण में, कृष्ण को शरण में नहीं जाना चाहिए, कृष्ण के अंदर से जो बोल रहे हैं उनके शरण में जाना चाहिए। क्या अर्थ है इसका बताइए? हमारा और अंदर का और बाहर का अलग है ना, हमारा आत्मा अलग है और शरीर अलग है, भिन्न है ना। ये भिन्नता को भगवान को भी लागू करते हैं, लेकिन उनको ये मूर्ख, क्योंकि वो अच्छा सही गुरु के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण नहीं लिया राधा कृष्ण ने, हालांकि बहुत बड़ा विद्वान थे लेकिन फिर भी भ्रमित थे। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद वो श्लोक उल्लेख कर रहे हैं, भक्ति सिद्धांत, जिसको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने चैतन्य चरितामृत के अनुभाष्य, तो चैतन्य चरितामृत के ऊपर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी टीका लिखा बंगला भाषा में, उसको अनुभाष्य कहते हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर ने भी लिखा था उसके ऊपर भाष्य, अमृत प्रवाह भाष्य करके। तो उस टीका चैतन्य अनुभाष्य के पंच आदि लीला के पंचम अध्याय के 41वां या श्लोक या 41 से लेकर 38वां श्लोक, दोनों सभी मिलाकर उन्होंने ये टीका दिया है, व्याख्यान दिया है उन्होंने। वहाँ पर वो कुर्म पुराण से उल्लेख करते हैं, देह देही विभेदो यम नेश्वरे विद्यते क्वचित, परमेश्वर में देह और देही का विभेद नहीं होता है, वो हमारे अंदर होता है, भगवान के अंदर ऐसे नहीं था। भगवान पूरा आत्मा है, पूर्ण आध्यात्मिक स्वरूप है। इसके बारे में हम लोग बहुत चर्चा किया ना, कैसे भगवान का स्वरूप आध्यात्मिक होता है, वो अपने मूल स्वरूप में इस जगत में प्रकट होते हैं, वो कभी भौतिक तत्वों द्वारा बनाया हुआ शरीर को स्वीकार नहीं करते हैं। तो हम इसके ऊपर बहुत चर्चा किया, जो पी सन नव्य आत्मा भूता नाम ईश्वरो पी सन प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवामी आत्ममाया, वो कभी भी भूलते नहीं है कुछ, बहुनी में वेदितानी जन्मानी तव चार्जुन, क्योंकि उनका शरीर नहीं बदलता है। ये सब चीज़ हम लोगों ने वर्णन किया, और कैसे वो 3 गुणों से युक्त ये भौतिक शक्ति से परे है वो, और जिनको वो शरण में जाता है वो भी मुक्त हो जाता है ये 3 गुणों से प्रभाव से, वो कैसे वो 3 गुण वाले शरीर वो कैसे धारण करेंगे, है ना। ये हम सब लोग चर्चा कर चुके हैं, सभी हम चर्चा, कभी कभी कपटी भाष्यकार इस स्पष्ट कथन को तोड़ मोड़ कर अर्थ करते हैं कि सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जाने समर्पित की जानी चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसे भाष्यकार पाठकों का ध्यान ऐसी बात की ओर आकर्षित करते हैं जो संभव नहीं है। ऐसे भाष्यकार यह नहीं जानते कि कृष्ण के मन तथा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। चाहे कि सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए। डिस्टॉर्ट द मीनिंग ऑफ व्हाट इज क्लियरली स्टेटेड हियर। भाष्यकार इस स्पष्ट कथन का तोड़ मोड़ कर अर्थ देखते हैं। ठीक है। ऐसे भाष्यकार यह नहीं जानते कि कृष्ण के मन तथा कृष्ण में कोई अंतर। कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वे परमेश्वर है। क्यों भगवान कृष्ण परम सत्य है परमेश्वर, ये भी एक लक्षण है कि उनके शरीर भौतिक तत्वों से नहीं बनता है। उनका शरीर उनका मन तथा स्वयं वे एक है और परम है, जैसा कि कूर्म पुराण में कहा गया है और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत के पंचम अध्याय के आदि लीला के 41वां श्लोक से 48वां श्लोक के अनुभाष्य में उद्धृत किया है। किए है, किया है, कैसे सब सब चीज क्या है, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन, गुरु को कैसे ऐसे संबोधित करेंगे, है ना। किया है वर्स्ट ट्रांसलेशन, थर्ड क्लास एक नंबर। कैसे भक्ति भावना बढ़ेगा इसका, इसको पढ़ने से। वेरी बैड, वेरी बैड। देह देही विभेदयम नेश्वरे विद्यते क्वचित, अर्थात परमेश्वर कृष्ण तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है। लेकिन इस कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व की प्रति नीरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। श्रील प्रभुपाद इसके ऊपर वो फिर अपने वो गौड़ीय पत्रिका में लंबा एक लेख लिख दिया उन्होंने, तो लंबा लेख लिख दिया। ये सब हमें करना चाहिए जो भगवान को क्या करते हैं, भगवान को क्या करते हैं, ब्लास्फेमिंग, निंदा जो करते हैं, उनको हमें वाद विवाद करके उसको हराना चाहिए हम लोग। ठीक है। वास्तव में चार चीज बताए गए भागवत में। जो ब्राह्मण होते हैं वो वाद विवाद करके उनको हराते हैं, जो क्षत्रिय होते हैं उनको जीव को काट देते हैं। ऐसा क्षत्रियों को भी हमें सृष्टि करना चाहिए, है ना। और जो वैश्य होते हैं वो अपना शरीर त्याग देते हैं तुरंत, या शूद्र है वह उस स्थान से चले जाना चाहिए। या शूद्र शरीर त्याग देते, ऐसे होता है कुछ। वो सती ने देह त्याग दिया ना शिवजी की निंदा के कारण, तो ऐसे होता है। प्रभुपाद जी एक पूरा लंबा लंबा कथा, और बहुत सारे ऐसे तथाकथित जो दार्शनिक है उनको भी प्रभुपाद जी ने खंडन किया, तो इसके कारण वो एक पूरा एक सेक्शन है विभाग उस ग्रंथ में, बेविल्डर्ड थिंकर्स, मुनि गणेर मति ब्रह्म, ऐसे बंगला भाषा में बेविल्डर्ड थिंकर्स, ऐसे पूरा विभाग है। अच्छा है, पढ़ लीजिए वो ग्रंथ, पढ़ना चाहिए। भगवद्गीता जो अच्छी तरह से जानना चाहते हैं वो पढ़ना चाहिए वो ग्रंथ, मुनि गणेर मति ब्रह्मा करके पूरा, बहुत सारे उसमें लेख है। रिनाउंसिएशन थ्रू विजडम, अंग्रेजी भाषा में। हिंदी इट इज देयर अवेलेबल, हिंदी ज्ञान कथा इट इज अवेलेबल, तो वो पढ़ना चाहिए फिर सभी को। तो यहाँ पर भगवान सार क्या बता रहे, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मां नमस्करो, हमेशा मेरा चिंतन करो, ऐसे बोल रहे भगवान। पिछले श्लोक में उन्होंने क्या बताया, इमं प्राप्य भजस्व मां, मेरा भजन करके मेरे पास आ जाओ जल्दी। उसके लिए क्या करना चाहिए, हमेशा चिंतन करना चाहिए, मन मना भगवान का हमेशा चिंतन, 2400 घंटा उनका चिंतन करना चाहिए। लेकिन कंस की तरह चिंतन नहीं करना चाहिए, कंस भी 2400 घंटा चिंतन करता है, वह वर्णन आता है, कोई विरला भक्त ही ऐसे वो चिंतन करता था भगवान का। तो उठते बैठते खाते सोते हमेशा भगवान कृष्ण का चरण चिंतन हुआ करता था। वो किस कंस का, लेकिन वो भक्ति नहीं है। क्यों भक्ति नहीं है बताइए, अनुकूल भाव से नहीं है वो, स्मरण जो है वो अनुकूल भाव से नहीं है। तो ये जो भक्ति के परिभाषा है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। तो अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषा से शून्य होना चाहिए, मतलब इंद्र तृप्ति की इच्छा से, और ज्ञान और कर्म योग वैराग्य अन्य चीज भक्ति को आवृत नहीं करना चाहिए। शायद वो सहायता करने करते हैं तो अनुकूल है तो उसको अपना सकते हैं उन सभी चीज़ों को, जैसे वर्णाश्रम है वो कर्म योग है, कर्म है वो गुण कर्म विभाग शर्म, लेकिन वो अनुकूल है इसलिए उसको जितना अनुकूल कारक है उतना स्वीकार कर सकते हैं उसको, लेकिन वो आवृत नहीं करना चाहिए भक्ति भावना को। तो आप ब्राह्मण के कार्यों को इतना मग्न हो गए ब्राह्मण के कार्यों में और भगवान को ही भूल गए, भक्ति करना ही भूल गए तो क्या हो जाए, वो ठीक नहीं, आवृत नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं ज्ञान करना जनावृतम, और अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, अनुकूल भाव से कृष्ण की सेवा करना चाहिए, उसको शुद्ध भक्ति या उत्तम भक्ति कहते हैं। तो ये सभी शब्दों का भी बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो कृष्ण मतलब कृष्ण और उनके जो विस्तार होते हैं राम नरसिंह वरह, उनको भी भक्ति कर सकते हैं और उनके भक्त भी उसमें आ जाते हैं, या तदीय जो उनके संबंध में जो चीज़ है उनको भी कृष्ण कहते हैं, वो कृष्ण शब्द का अर्थ है। काली भक्ति गणेश भक्ति दुर्गा भक्ति नहीं होता है, कृष्ण भक्ति होता है, भक्ति मतलब कृष्ण भक्ति उत्तम भक्ति। कृष्णानुशीलनम, अनुशब्द मतलब क्या है, और शीलनम मतलब मन वाणी और शरीर से जो कार्य करते हैं उनको शीलनम कहते हैं। तो उनको भगवान के संबंध में करना है। अनु शब्द क्या है, वो संबंध जोड़ता है, अनु मतलब संबंध जोड़ना जोड़ना, तो उसका भी बहुत गहरा अर्थ होता है। तो दीक्षा के द्वारा हम लोग जोड़ते हैं, तब तक हमारे कार्य भौतिक कार्य होते हैं क्योंकि हम लोग यही ऐसे कार्य कर रहे हैं, तो दीक्षा से हम लोग जोड़ देते हैं, तो तब वो शीलनम क्या हो जाता है, कृष्ण से जुड़ जाता है अनुशीलनम। और उसके बाद में अनुकूल लेना, वो शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण, अनुकूल भावना से हमें क्या करना चाहिए, भगवान का सेवा करना चाहिए। तो चिंतन मनन, मन का कार्य क्या होता है, चिंतन करना स्मरण करना चिंतन करना, ये मन का कार्य है। तो उसको अनुकूल भावना से हमें करना चाहिए, ऐसे नहीं कि भगवान को मारना है मुझे उनके बारे में जा हमेशा दिन रात चिंतन करना है ना, वो अनुकूल भावना है। कभी कभी ऐसे होता है दो भक्तों के बीच में झगड़ा होता है, वो जप करते समय में भी उस भक्त के बारे में बुरा सोचते रहते हैं, उसने ऐसे बोल दिया, उसने ऐसे कह दिया, उसने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, जप नहीं होता रहता है, उनके बारे में स्मरण होता रहता है। तो ऐसे वो अनुकूल भावना है, मन मना मतलब, तो मन मना का है तो भगवान को ऐसे अनुकूल भावना से हमें कुछ लोग असुरी होते हैं, वे कभी वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं, किंतु ईर्ष्यावश जिस तरह की कृष्ण का मामा राजा कंस करता था, वह भी कृष्ण का निरंतर चिंतन करता रहता था, किंतु वह उन्हें अपने शत्रु रूप में सोचता था। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था और सोचता रहता था कि न जाने कब कृष्ण उसका वध कर दे। इस प्रकार के चिंतन से हमें कोई लाभ नहीं होने वाला है। या शिशुपाल भी गुणगान करता था, शिशुपाल भी क्या कीर्तन करता था, भगवान को निंदा ही उसका कीर्तन था उसका। शिशुपाल का जन्म से ही जब उसने बोलना शुरू कर दिया, वो भी भगवान कृष्ण के संबंध, वो परिवार में ही जन्म लिए थे उसने भी, शिशुपाल भी, वो भी एक संबंधी है भगवान के। तो ऐसे कीर्तन नहीं होना चाहिए, ऐसे स्मरण नहीं होना चाहिए, सदैव चिंतन। इस प्रकार चिंतन से हमें कोई लाभ नहीं होने वाला है, उन्हें नहीं। मनुष्य को चाहिए कि भक्तिमय प्रेम में उनका चिंतन करे, यही भक्ति है। उसे चाहिए कि वह निरंतर कृष्ण तत्व का अनुशीलन करे। तो वह उपर्युक्त अनुशीलन क्या है, तो वह उपयुक्त अनुशीलन क्या है, या प्रामाणिक गुरु से सीखना है। कृष्ण भगवान है और हमें कई बार कह चुके हैं कि हम कई बार कह चुके हैं कि उनका शरीर भौतिक नहीं है, अभी तो सच्चिदानंद स्वरूप है। इस प्रकार की चर्चा से मनुष्य को भक्त बनने की में सहायता मिलेगी, अन्यथा अप्रामाणिक साधन से कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करना व्यर्थ होगा। मन मना, अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करना करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। भव मद भक्तो, कृष्ण की पूजा करने के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं जहाँ पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे। मनमना भव मद भक्तो, मध्याजी का वर्णन नाम, मध्याजी मां नमस्कार, मध्याजी मतलब भगवान को पूजा करना, और नमस्कार करो मतलब मां नमस्कारो। ऐसे अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्कर होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। दंडवत का अर्थ क्या होता है, तो कर्मणा मनसा और वाचा पूरी तरह से भगवान का सेवा होता है। इसे वह कृष्ण भावने पूर्णतया तल्लीन हो सकेगा, इसे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में न आए। उसे श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। भगवद्गीता के 7वें तथा 8वें अध्यायों में भगवान की अभिसार बता रहे हैं। सो भगवान की ऐसी शुद्ध भक्ति की व्याख्या की गई है जो कल्पना योग तथा सकाम कर्म से मुक्त है। जो पूर्णतया शुद्ध नहीं हो पाते वे भगवान के विभिन्न स्वरूपों द्वारा तथा निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति तथा अंतर्मय परमात्मा द्वारा आकृष्ट होते हैं, किंतु शुद्ध भक्त तो परमेश्वर की साक्षात सेवा करता है। कृष्ण संबंधी एक उत्तम पद्य में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा में रत है वे सर्वाधिक अज्ञानी है, उन्हें कभी भी कृष्ण का चरम वरदान प्राप्त नहीं हो सकता। कौन सा है ये गीत, हमें तो पता नहीं है। पिछले बार भी जब इसका वर्णन कर रहे थे तब भी हमें पता नहीं था। किसी को पता है, आपने बहुत सारे गीत पढ़े हैं, इसको पता कर देना चाहिए, आप कीजिए उसको, हम उसको गा सकते हैं। जो व्यक्ति निरंतर या हो सकता है तो प्रारंभ में कोई हो सकता है कि प्रारंभ में कोई भक्त अपने स्तर से नीचे गिर जाए, तो भी उसे अन्य सारे दार्शनिकों तथा योगियों से श्रेष्ठ मानना चाहिए। जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भक्ति में लगा रहता है उसे पूर्ण साधु पुरुष समझना चाहिए। क्रमशः उसकी आकस्मिक भक्ति विहीन कार्य कम हो जाएंगे और उसे शीघ्र ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। वास्तव में शुद्ध भक्त के पतन का कभी कोई अवसर नहीं होता आता है। या वो हम बोलना भूल गए, रूप गोस्वामी वैसे कहते हैं, जो ऐसे भक्ति के नियमों को पालन करते हैं जो भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन हुआ है, वो लोगों का कभी पतन नहीं होता है। ऐसे बोलते हैं, उनका पतन भी हो गया तो उनको कोई प्रायश्चित करने का जरूरत नहीं है, ऐसे बोलते। जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भक्ति में लगा रहता है उसे पूर्ण साधु पुरुष समझना चाहिए। क्रमशः उसके आकस्मिक भक्ति विहीन कार्य कम हो जाएंगे और उसे शीघ्र ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। वास्तव में शुद्ध भक्त को के पतन का कभी कोई अवसर नहीं आता, क्योंकि भगवान स्वयं ही अपने शुद्ध भक्त की रक्षा करते हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सीधे कृष्ण भावनामृत पथ को ग्रहण करे और संसार में सुखपूर्वक जीवन बिताए, अंततो गत्वा वह कृष्ण रूपी परम पुरस्कार प्राप्त करेगा। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के परम गुह्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो अगला अध्याय हम लोग शुरू करेंगे कि नहीं? ठीक है, तो इस अध्याय के बारे में पहले तात्पर्य में भी भगवान बोलते हैं, लेकिन अंतिम तात्पर्य में भी उसके बारे में बोलते हैं। हम उसको तभी पढ़े, बाद में ही पढ़ेंगे उसको। इस अध्याय में विशेष करके भगवान के ऐश्वर्य, इसको विभूति योग कहते हैं संस्कृत भाषा में, भगवान के ऐश्वर्यों के बारे में वर्णन हुआ। वैसे तो 7वें अध्याय 9वें अध्याय में भी भगवान के ऐश्वर्यों का वर्णन हुआ। ऐसे वर्णन हुआ आप जानते हैं ना, रसो अमप सुकौंते या प्रभास में शशि सुगया, और उनके शक्तियों का परापरा शक्ति। तो और 9वें अध्याय में भी वो भगवान वर्णन करते हैं, मई साक्षी हूँ, मई गति हूँ, मई प्रभु हूँ, मई स्थान शर शरण हूँ, मई सब कुछ हूँ, ऐसे भगवान बोलते हैं। सो मई यज्ञ हूँ, मई कर्म हूँ, मई कर्मकांड हूँ, तीन विद्याओं मई हूँ, ऐसे बहुत सारा चीज़ भगवान उनके ऐश्वर्यों के बारे में वर्णन करते हैं। तो इसमें विशेष ऐश्वर्यों का इसमें वर्णन करते हैं। इसलिए ये जो चीज़ है, ये जो ज्ञान है दिया गया है यहाँ पर, वो जो पहले दिया हुआ ज्ञान से भी श्रेष्ठ है वैसे। और भगवान ऐश्वर्यों से युक्त है, इसलिए वो भगवान है ना। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य ज्ञान वैराग्यस्य शण्णं भग इतिंगिना। तो वो 6 ऐश्वर्यों से युक्त है वो, इसके कारण उनको भगवान श्री कृष्ण क्या है, भगवान इसलिए है क्योंकि वो 6 ऐश्वर्यों से युक्त है। तो ऐसे सभी महान आचार्यों ने स्वीकार किया है, क्योंकि ऐसा कोई ऐसे ऐश्वर्यों को दर्शाए नहीं। मनुष्य के इतिहास में जिस हद तक भगवान कृष्ण ने इन 6 ऐश्वर्यों को दर्शाया, उस हद तक कोई ऐसे व्यक्ति नहीं किया। इसलिए भगवान कृष्ण ही भगवान है। तो उन ऐश्वर्य बताया है उन्होंने, वो ऐश्वर्य हमें जानना चाहिए, इसलिए यह सब यहाँ पर बताया। दूसरा इसलिए बता रहे हैं कि हम लोग जितना भगवान के ऐश्वर्यों के बारे में सुनते हैं, तो 8वें अध्याय में हम लोग चर्चा कर रहे थे या 9वें अध्याय के आरंभ में भी, क्योंकि भगवान अवजानंति माम मोड़ा, लोग वो जानते नहीं हैं कि उनके अचिंत्य शक्तियां हैं और ऐश्वर्य है, वो उसका जानकारी ना होने के कारण जब भगवान इस भौतिक जगत में मनुष्य रूप के मनुष्य समाज में प्रकट होते हैं तो उनको क्या करते हैं, उनका उपहास करते हैं लोग। तो इसलिए हमें जितना हम भगवान के बारे में सुनेंगे श्रवण करेंगे और हमें लाभ होगा, और भगवान के प्रति भक्ति बढ़ जाएगा, श्रद्धा बढ़ जाएगा कि भगवान कृष्ण ही परम भगवत्तम परम देवोत्तम पुरुष है, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एंड द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो ऐसे हमें करना चाहिए। तो पहला श्लोक श्री भगवान उवाच भूयेव महाबाहो शृणु मे परम वचः यत्तेऽहं प्रियमानाय वक्ष्यामि हितकाम्यः। श्री भगवान ने कहा हे महाबाहो अर्जुन और आगे सुनो और सुनो बोल रहे। क्यों और सुनो बोल रहे, हम चर्चा कर रहे थे अभी चर्चा कर रहे थे कि जितना हम सुनेंगे भगवान के बारे में हम लोग उतना भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ जाए, है ना। ऐसे कई बार हुआ ना भगवान की लीलाओं में भी, तो हम लोग देखते हैं बहुत सारे गोपियाँ या वो जो ब्राह्मण पत्नियाँ थी जो भगवान का सेवा किया उन्होंने, यज्ञिक ब्राह्मण पत्नियाँ, उन्होंने भगवान के बारे में कैसे उन्होंने उन्होंने वो भगवान के प्रति कितना क्यों उतना उनको क्या हो रहा है। हम लोग रुकेंगे क्या है? आ रहा जा रहे आ रहे क्यों करते हैं वो सब चीज तो भगवान के प्रति क्यों उतना प्रेम और आकर्षण जागृत हो गया उनको, क्योंकि उन्होंने सुना था जो ये जो यज्ञिक ब्राह्मण थे वो वृंदावन जो व्रज धाम है उसके थोड़ा बाहर रहते थे, वो लोग उसी नजदीक में रहते थे, और जो भी वृंदावन से गुजर के जो ऐसे अलग अलग चीज़ों को बेचने वाले वो आते थे उनको, उनसे वो सुना उन्होंने, स्त्रियां सुन के भगवान के प्रति आकर्षित हो गए। उनके पति लोग क्या है वो लोग भगवान के बारे में जानकारी नहीं था उनको, वो लोग हालांकि उनको ही प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे थे लेकिन उनको पता नहीं था वही है यहाँ पर, तो ऐसे। और रुक्मिणी देवी तो देखा ही नहीं था भगवान को, ऐसे ऐसे उनको उस समय पर कोई एजुकेशन नहीं था, वो एक दूसरों को मिलके लव अफेयर हो गया ऐसे करके उनको कैसे हो गया प्रेम हो गया भगवान के प्रति। उन्होंने नारद मुनि से सुना था, ऐसे कोई ऋषि मुनि राज्य में आते थे उनके राज्य में भगवान के बारे में बताते थे, उनको सुन के भगवान के बारे में सुन के सुन के सुन के क्या हो गया उनको प्रेम हो गया उनसे, तो उन्होंने ऐसे खत लिख दिया भगवान को। तो ऐसे सुनने से क्या हो जाता है, श्रद्धा जागृत हो जाता है। या बताया जाता है ना तीसरे स्कंद में ऐसे बताया, कपिल मुनि बोलते हैं सो सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंति रत्कर्ण रसायन कृता तज्जोशनाद यदपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा भक्तिर श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। तो सताम प्रसंगान भक्तों के संग में भगवान की वीर्य गाथा सुनना चाहिए, ऐसे ऐश्वर्यों के बारे में सुनना चाहिए। सुनने से क्या हो जाता है, वो कैसा है वो उनके बारे में जो कथा है वो कैसा है, वो कानों के लिए रसायन है, वो अमृत के समान है, और हम उसको सुनते सुनते अपवर्ग में की ओर जाएंगे। भौतिक जगत को पवर्ग कहा गया, पवर्ग मतलब यहाँ पर प प ब ब म पवर्ग, ये है ना संस्कृत भाषा में, पवर्ग को प प ब ब म प ब ब म को पवर्ग कहते हैं। वह मतलब यहाँ पर परिश्रम होता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है बौद्धिक जगत में, और फेना परिश्रम करने से मुंह में जाग आ जाता है, परिश्रम करके 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 आजकल बोलते हैं हम एसी में बैठ के परिश्रम करते हैं लेकिन पीछे से आता है अभी है ना, तो फेना और और क्या है भ, पहला क्या है उस वो कर्म करने से क्या परिश्रम करने से बंधन भी होता है, भ मतलब बंधन, और उसके कारण भय भी हो जाता है भय, और अंत में म मतलब मृत्यु। ये पांच चीज, ये भौतिक जगत का ये विश्लेषण है और कुछ नहीं इस भौतिक जगत, और इससे बढ़कर कोई ऐसा विश्लेषण कर सकता है और वह कोई ऐसा एक कोई बुद्धिमान व्यक्ति है जो भौतिक जगत को अच्छी इससे भी बढ़कर कोई विश्लेषण कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कवियों ने लिखा है बहुत सारा चीज लेकिन सिर्फ वो कल्पना है, आकाश पुष्पायते है, आकाश में पुष्प के समान है। तो इसलिए अपवर्ग की ओर सुनते 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 हम लोग अपवर्ग की ओर जाएंगे, अपवर्ग ये पवर्ग है, अपवर्ग मतलब जहां पर ये सब चीज नहीं है, वैकुंठ। श्रद्धा रुचिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। और इतना ही नहीं, भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत हो जाता है और रति आकर्षण जागृत हो जाता है, या भाव प्रकट हो जाता है, भक्ति प्रेम भी प्रकट हो जाता है। प्रेम के नौ स्तर के बारे में वर्णन है। तो ये सब चीज होते हैं सिर्फ श्रवण करने से, बैठ के श्रवण करने से। तो इसलिए और सुनो बोलते हैं, आगे सुनो बोलते हैं। और क्या है, परमम वचः, मेरे सर्वोच्च वचन, ऐसे कहते हैं। वैसे जो भगवान के वचन है वो सर्वोच्च वचन है, उनके जो उपदेश है वो सर्वोच्च उपदेश है। तीसरे अध्याय में हम लोगों ने बताया ना, देखना हमें जिनको ये भगवद गीता के जो उपदेश है वो रोदेन के उपदेश के समान समझना चाहिए। ऐसे तीसरे अध्याय में हम लोगों ने देखा, तीसरे अध्याय के 31वां और 32वां श्लोक, वहां पर वो बोलते हैं भगवान कि इनको पालन जो नहीं करते हैं उनको क्या होता है, इनको पालन करने से क्या होता है। तो वो कहते हैं ना, ज्ञानी पुरुष, या इसके पर जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो इसका उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, भगवान कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक है। अतः किसी अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है। तो भगवान के उपदेश क्या है, वो शाश्वत सत्य है। दे आर अपौरुषेय, एटर्नल ट्रुथ्स दे आर, उनसे बढ़कर और कोई उपदेश देने वाला नहीं है। ऐसा कोई तथाकथित वैदिक अनुयायी ऐसे बोलता है, हम भगवद्गीता उतना महत्वपूर्ण ग्रंथ नहीं है, एक वो मूर्ख नंबर एक है, उसको कभी समझा नहीं, वेदों का ज्ञान वो समझा नहीं है, वो वेदवाद रहता है। सुनो मे परमम वच यत्तये हम प्रियमाणाय। परमम वच शब्द का ये भी अर्थ होता है कि इससे पहले उन्होंने जो वर्णन किया था उनके ऐश्वर्य के, उससे भी श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान कर रहे हैं आप, उससे भी ज्यादा, क्योंकि इस अध्याय में विशेष ऐश्वर्यों को वो वर्णन करते हैं भगवान। यत्ते हम प्रियमाणाय वक्षामि हितकाम्यया। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूं, यत्ते हम प्रियमाणाय, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो और तुम्हारे लाभ के लिए हितकाम्यया ऐसे ज्ञान प्रदान कर रहा हूं, ऐसे कहते हैं। तो इसलिए भक्त लोग ही इन चीजों को समझ सकते हैं। और प्रभुपाद जी अंत में कहते हैं कि कैसे भक्तों के बीच में ऐसे चर्चाएं होते हैं, जो जो भगवान के विषय में कोई सुनता है क्यों तो वो भक्ति में रमता जाता है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषयों में सदा श्रवण करे, इससे उसकी भक्ति बढ़ेगी। भक्तों के समाज में कैसे भक्ति बढ़ाना चाहिए, हम लोग कभी कभी चर्चा करते हैं ना, हाउ टू मेक एडवांसमेंट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। भक्तों के संग में आके श्रवण करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, ऐसे भक्ति बढ़ेगा। भक्तों के समाज में ऐसे चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच में हो सकती है जो सचमुच कृष्ण भावनामृत के इच्छुक है। क्यों ऐसे चर्चाएं नहीं होते भक्त समाज में, कृष्ण भावनामृत आंदोलन में कब ये चर्चाएं हो सकती है, जो कृष्ण भावना भावित होना चाहते हैं तभी होते हैं, नहीं तो क्लास भी नहीं चलेंगे, चर्चाएं भी नहीं चलेंगे। उन लोगों के बीच हो सकती है जो सचमुच कृष्ण भावनामृत के इच्छुक है, ऐसी चर्चाओं के अन्य लोगों लोग भाग नहीं ले सकते हैं। भगवान अर्जुन को स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, चूंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो अतः तुम्हारे लाभ के लिए ऐसी बातें कह रहा हूँ। या दूसरे शब्दों में, जो भगवान के प्रिय नहीं हैं उनके लिए ये जो चर्चाएँ, ऐसी चर्चाएँ प्रकट नहीं होती है। ठीक है, श्लोक क्रमांक 2। नमे विदुसुरगणास् प्रभवं न महर्षया आमादिरि देवानां महर्षिणां च सर्वशा। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार के देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ, उद्गम हूँ। तो देवी देवताएं भगवान को नहीं जानते हैं। सुधागण प्रभवन्न महर्षि मतलब यहाँ पर सप्त ऋषि है, सप्त ऋषि भी है, और ये जो महर्षि थे कौन कौन ऋषिगण थे ना, तर्को प्रतिष्ठो सुतयो विभिन्नो नासाव ऋषिर्यस्य मतम न भिन्नम, वो सब लोग ऋषि है, विशेष करके सप्त ऋषि क्या है, महर्षि है। लेकिन ये ऋषि लोग भी भगवान को नहीं समझे, कौन वो गौतम खनद पतंजलि जैमिनी वो लोग भी समझे नहीं भगवान को। अहम आदिर ही देवानाम महर्षिनाम च सर्वस्व, क्यों मैं सबके स्रोत हूँ, मैं आदि हूँ उनके। तो क्योंकि भगवान सबके आदि है, जो मूल होता है वो पूर्ण होता है, और जो जिससे निकलते हैं वो भी पूर्ण होते हैं, लेकिन वो आंशिक पूर्ण होते हैं, वो जो परम पूर्ण होता है उनको समझ नहीं पाते हैं। वो पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णा पूर्णमदश्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो इसलिए और भागवत में प्रभुपाद यहाँ पर लेकर श्रीमद् भागवत में स्पष्ट कहा गया कि बड़े बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान पाते। कहाँ पर बताया ऐसे, जन्माद्यस्यतः इतरश्चार्थेषु अभिज्ञा स्वराट्थेने ब्रह्महृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। सो मुह्यन्ति यत्सूरयः, बड़े बड़े जो देवतागण भी क्या हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। कैसे भ्रमित हो जाते हैं, वो लोग जैसे पृथ्वी को जल समझते हैं, या जल को पृथ्वी समझते हैं, या अग्नि को जल समझते हैं, जैसे होता है ना अग्नि को जल रेगिस्तान में वगैरह, अग्नि को वो अग्नि है उसको जल समझना, या जल में अग्नि समझना, तो ऐसे वो लोग भी भ्रमित हो जाते हैं। क्यों भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि मैं सबका स्रोत हूँ, जन्माद्यस्यतः, इसके कारण। यहाँ पर भी वही चीज, अहम आदिर ही देवानां, मैं देवताओं का, इसका अर्थ क्या होता है, जो स्रोत है, व्हाट इज दैट इफेक्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड द कॉज कंप्लीटली। सो जो प्रभाव जो है वो कारण को समझ नहीं सकेगा, पूर्णतः समझ नहीं सकेगा। प्रभाव प्रभाव या प्रभाव कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट, ये सिद्धांत यहाँ पर बता रहा है। तो थोड़ा बहुत हम लोग समझ सकते हैं जब भगवान स्वयं हमें प्रकाशित करते हैं। यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्य कथितायर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। तो इसलिए हम लोग देखते हैं बहुत सारे ब्रह्मा जी विमोहित हो गए, ये कैसे भगवान हो सकते हैं, बाएं हाथ में कुछ अन्न खाने वाला चीज रखे है और ग्वाल बाल सभी खाके खाके उनका झूठा दे रहे हैं, हम भगवान को ऐसे, वो ब्राह्मण है ब्रह्मा जी, ये संसार के भौतिक जगत के पहले ब्राह्मण है वो, हम बहुत शुचि मुची के नियम को पालन करते हुए भगवान को यज्ञ में अर्पण करते हैं, ऐसे भगवान एक ऐसे कौन कैसे भगवान हो सकते हैं, हम कुछ संस्कार नहीं कुछ नहीं बाएं हाथ में कुछ खा रहे हैं ऐसे करके, अनसिविलाइज्ड कवर्ड, हाउ कैन ही बी अ गॉड, ऐसे लोग सोचते हैं ना, कवर्ड कैसे भगवान हो सकते हैं, ग्वाल बाल असभ्य ग्वाल बाल कैसे भगवान हो सकते हैं, ऐसे सोच रहे। और इंद्र भी क्या सोचा, ये छोटे ग्वाल बाल के प्रभाव में आकर ये सभी ग्वाले क्या कर दिए, मेरा पूजा करना बंद कर दिया, ये तो बहुत ही दुष्ट बालक है, ऐसे बहुत सारे चीज बोलता है इंद्र। तो ऐसे बड़े बड़े देवता लोग भी भ्रमित हो जाते हैं। तो क्योंकि भगवान ही उनके आदि है, भगवान पूर्ण है, वो सबका स्रोत है, इसलिए उनको समझ पाना मुश्किल है। हम आगे के श्लोक में वो वर्णन करते हैं। तो प्रभुपाद जी फिर कैसे क्या कहते हैं इस तात्पर्य में, कैसे फिर भगवान को समझना चाहिए? स्वयं जैसे भगवान ने बताया है भगवत गीता में, भागवत में, तो उसके अनुसार, उन उपदेशों के अनुसार हमें भगवान को जानना चाहिए। क्योंकि अधिकांश लोग कृष्ण के उनके वास्तविक रूप में नहीं समझ पाते, अतः वे अपने अहितु की कृपा से ऐसे चिंतकों पर दया दिखाने के लिए अवतरित होते हैं। हमने वो चौथे अध्याय के आरंभ में एक श्लोक उल्लेख किया था ना, दशम स्कंद से, विज्ञानम अज्ञानम विदापमार्जनम, ऐसे कहते हैं। सो विज्ञानम अज्ञान विदापमार्जनम क्या आता है? भगवान के जो विज्ञान, साक्षात्कार ज्ञान जब प्रकट हो जाता है, या साक्षात वह स्वयं यहाँ पर प्रकट हो जाते हैं, उनके बारे में जो भी अज्ञान है उनका नष्ट हो जाता है, वो धुल जाते हैं, ऐसे होते हैं। तो दया दिखाने के लिए यहाँ पर भगवान अवतरित होते हैं। ऐसे ये चिंतक भगवान के असामान्य कार्यकलाप के होते हुए भी भौतिक शक्ति से कलमश ग्रस्त होने के कारण निर्विशेष ब्रह्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। और तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद भी ऐसे हो रहे कि ये भौतिकवादी विद्वान कैसे जान सकते हैं, एकेडमिक स्कॉलर्स, बार बार इनको खंडन किया ना भगवान प्रभुपाद जी भगवदगीता में। वो पाश्चात्य देश में जब प्रचार कर रहे थे, वहाँ के लोग, ये मैक्स मुलर और उसके पहले विलियम जो, ये सभी लोगों से आरंभ हुआ ये एकेडमिक स्टडी ऑफ वेदास। तो इतिहास में 200 साल से ऐसे चल रहा है, लोग वेदों को या ऐसे वैदिक ग्रंथों को वो जिस विधि से उसको अध्ययन किया जाता है वैसे नहीं कर रहे। तद्विधि प्रणिपात है न परिप्रश्न न सेवा, गुरु आध्यात्मिक गुरु के पास जाके प्रशिक्षण लेके उनको अध्ययन नहीं कर रहे, वो अपने स्वतंत्रता से वो अध्ययन करते हैं। और जब हम लोग विज्ञान के विरुद्ध हम लोग जब बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं हमारे ओर से पहले प्रशिक्षण लेना चाहिए, ऐसा होता है। यू हैव टू हैव अ PhD फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, देन ओनली वी विल टॉक टू यू, ऐसा होता है। मूर्ख लोग, कितना ये है ना, दिस इज चीटिंग, इट इज चीटिंग, इट इज। तुम्हारा प्रक्रिया वही है, स्वतंत्र रूप में मैं संशोधन करके क्या करूँगा, वो ज्ञान को हासिल करूँगा, वही तुम्हारा प्रक्रिया है ना। वो इंद्रियों से के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का क्या आरोपण, तो मतलब क्या है, अपने स्वयं के शक्यता से इंद्रियों को प्राप्त करना। लेकिन जब भी हम लोग बोलते हैं, हम लोग भी स्वतंत्रता से विज्ञान को अध्ययन किया है और हम समझ लिया कि ये सब बकवास है, बोलेंगे तो तुम्हें सही प्रशिक्षण नहीं मिला है, ऐसे बोलेगा। लेकिन हम उसको नहीं मानते हैं। तो ऐसे महान ऋषि और देवी देवता भी नहीं समझ पाते हैं, तो ऐसे भौतिक जगत के तथाकथित विद्वान कैसे जान सकते हैं? जैसे राधा कृष्ण जैसे विद्वान कैसे जान सकते हैं भगवान को, वो कैसे जान सकते हैं, वो भगवान के अंदर का बाहर का क्यों ऐसे बोलेगा, है ना, वो समझ नहीं पाएगा। और प्रभुपाद जी वो दोहरा रहे कि जैसे निर्विशेष ब्रह्म को या भगवान को समझना आसान है, लेकिन भगवान को समझना मुश्किल है। ये हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके थे, वो मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। वो आगे के श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी उल्लेख करते हैं उसको। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरं असम्मूढसमर्थेषु सर्वपापै प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित तथा समस्त पापों से युक्त है। ये भी पहले भगवान ने बताया है, यो माम अजम अनादिम च, मैं अजन्मा हूँ। कहाँ पर बताया उन्होंने? बहुत जगह बताया ना, अजोपि सन् नव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्ममाया। इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोल रहे, लोग कहते हैं कि वो देवकी के गर्भ में जन्म लिया, उन्होंने देवकी से जन्म लिया, तो कैसे वो भगवान अजन्मा हो सकते हैं या अनादि हो सकते हैं, ऐसे कहते हैं। क्योंकि अजन्मा है इसलिए वो अनादि भी है ना। जो जिसको जन्म होता है वो उसका आदि होता है। हमारे माता पिता हमारे आदि है, उनके माता पिता उनके आदि है, तो इसलिए अज शब्द का अर्थ होता है उनका कोई जन्म नहीं होता है और वो अनादि भी है इसके कारण। और समस्त लोगों का स्वामी है वो, महेश्वर है। तो हम लोगों ने लोकपालों का जर चर्चा किया था, देवी देवताएं कौन है, वो लोकपाल है, सो एडमिनिस्ट्रेटर्स। लेकिन भगवान क्या है, महेश्वर है, व्यक्ति लोक महेश्वरम, इसको पहले भी भगवान वर्णन किए थे। कहाँ पर महेश्वर शब्द कहाँ पर आता है इससे पहले, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं महेश्वर हूँ, वहां पर शिल प्रभुपाद श्वेताश्वर उपनिषद से उल्लेख करते हैं ना कि भगवान कैसे महेश्वर है करके। तो ऐसे भगवान महेश्वर है, परम स्वामी है सभी लोगों के, जो ब्रह्म चलाने वाले देवी देवता है उनका ही परम स्वामी है। तो ये जो जानते हैं असम मूढ़ अस मर्तेषु सर्व पापय प्रमुच्यते, असम मूढ़ कोई संशय बिना जो इसको जानते हैं वो क्या हो जाते हैं, सर्व पापय प्रमुच्यते मर्तेषु सर्व पाप प्रमुच्यते, सभी पापों से वो मुक्त हो जाते हैं। तो सर्व पाप प्रमुच्यते, जो पाप और पुण्य दोनों हैं उससे मुक्त हो जाते हैं, ऐसे कहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर छठे अध्याय के आरंभ के श्लोक को वर्णन कर रहे हैं, वहां पर नैष्कर्म्यम नैष्कर्म को प्राप्त करते हैं ऐसे कहते हैं, जो भगवान के आदेश अनाश्रित कर्म फलम। तो जैसा कि भगवद्गीता के छठे अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है कि जो भगवान के आदेश मानकर कोई कर्तव्य करता है और जो अपने कर्मों के शरण ग्रहण नहीं करता, अनाश्रित कर्म फलम, वही असली सन्यासी है। जो भगवान के निर्देशानुसार कर्म करता है वो वास्तव में सन्यासी तथा योगी भी वही है। केवल सन्यासी या छद्म योगी को के वेश में रहने वाले वाला व्यक्ति नहीं। तो इस श्लोक में, जैसे पहले इसके पहले श्लोक में भगवान ने बताया कि मुझे समझना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि मैं ही सबका स्रोत हूँ, देवी देवताएं ऋषि भी वो स्रोत। लेकिन जो ऐसे मुझे समझते हैं, जो मैं अजन्मा और अनादि और व्यक्ति लोक महेश्वरम है, तो वो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो हम लोग कृष्ण की विशेष विशिष्ट ऐश्वर्यों की महिमा, इसकी महिमा क्या है, इन ऐश्वर्यों को जानने से क्या होता है, उसकी महिमा को यहाँ पर भगवान वर्णन कर रहे हैं इन श्लोकों में, विशेष करके इस श्लोक में, ठीक है। और आगे तो हम यहीं रुकेंगे क्योंकि ये लंबा है, तो हम शाम को इसको चर्चा करेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। माफ कीजिए लंबा ले लिए, कृष्ण शाम को ले लेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण, हाँ 4 बजे तुरंत कर दोपहर में प्रसाद के बाद थोड़ा समय विश्रांति में चला जाता है ना, है ना।